सर्वप्रथम मैं श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमल में प्रणाम करते हैं और श्री श्री गौर नेता श्रीनाथ जी श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के चरण कमल में नमस्कार करके श्रीमद् भागवतम कहना प्रारंभ कर रहा हूँ। और प्रारंभ करने से पूर्व मैं श्रीपाद श्री धनोधर स्वामी जी महाराज को अनेक धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत प्रेम से इस न्यू जर्सी में बुलाया था। महाराज ने कहा था हमसे कि आप आइए अब हम लोग बैठ कर भागवत की टीका पढ़ेंगे। बताया कि बहुत सुंदर वातावरण है और वृंदावन में महाराज जी साथ में रहते थे हमारे, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस मंदिर के अध्यक्ष उनके कृपा पात्र ब्रज किशोर प्रभु, इनके विषय में सुना था, महाराज मिश्रा ने बताया था, उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वृंदावन चंद्र प्रभु और उनकी धर्म पत्नी जसवंती देवीदासी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने गुरु भ्राता श्री सामर्थ्य सी जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, ये आए श्रीमद् भागवतम में। और इसके साथ ही साथ अन्य भी जो भी श्रोता है सब अपने बंधु हैं, संबंध है भगवान के नाते से, आप सब आए भागवत में, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे चांस दिया, अवसर दिया भगवान कृष्ण के गुण का वर्णन करने के लिए, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं इस समय नाम नहीं बोल रहा हूँ पर धीरे धीरे मुझे पता लगने लगेगा, मैं नाम से ही परिचित हो जाऊंगा सबसे, तो अंतिम में नाम रखकर भी धन्यवाद दूंगा। तो नए नए हूँ, मुझे कुछ नाम का पता नहीं है। इसके पहले मैं क्यूंस में न्यूयॉर्क में भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया था, तो स्वाभाविक मैं पूछा वृंदावन चंद्र प्रभु जी से कि श्रीमद् भागवतम से कौन कथा होनी चाहिए, तो वो तो हम पर ही छोड़ दिए थे आपकी जो इच्छा। लेकिन वास्तव में मैं पूछा करता हूँ श्रोताओं से कि कौन कथा होनी चाहिए, तो बाद में वो इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे कि जो कथा हुई थी वहाँ न्यूयॉर्क में उसके बाद की कथा कही, वहाँ भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ था। तो यहाँ पर हम भगवान की किशोर अवस्था का वर्णन करेंगे और श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की जो किशोर लीला है यही सबसे रसमयी लीला मानी गई है। इसी अवस्था में भगवान ने राष्ट्र विहार किया और लीला किए, हम तो राष्ट्र विहार तक नहीं पहुंच पाएंगे, उसके पहले जितना संभव हो सकेगा उस लीला को कहेंगे। मैं अपने इस हरे कृष्ण आंदोलन में हिंदी भाषी के रूप में विख्यात हूँ, मैं पूरे संसार में जहां भी गया हिंदी में कथा कहने के लिए मुझे कहते हैं, तो मैं हिंदी में बोलूंगा, जो भी त्रुटि है उसे क्षमा करेंगे, भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करेंगे। 15वें अध्याय चालू करें दशम स्थान में श्री शुक उवाच ततश्चतौ गन्धमयः श्रितौ व्रजे गभूवतुस्तौ पशुपाल सम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखीशमं पदैर् वृन्दावनं तुल्यमतीव चक्रतुः। ततश्च पांचवें वर्ष की लीला के बाद श्रीकृष्ण और बलराम पौगंड वयः श्रितौ, पौगंड अवस्था में स्थित हुए, पांच वर्ष के बाद छठवें वर्ष से दसवें वर्ष के बीच की अवधि को पौगंड अवस्था कहते हैं, और एक से पांच तक के कुमार अवस्था कही जाती है, छह से दस तक पौगंड अवस्था और ग्यारह से पंद्रह तक किशोर अवस्था कही जाती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने छह वर्ष के बाद ही किशोर अवस्था प्रकट कर दिए थे ब्रज में, इसीलिए पौगंड लीला और किशोर लीला में कोई भेद नहीं। भगवान श्री कृष्ण जो भी बाद में लीलाएं हैं ब्रज में, तो प्राय किशोर के रूप में उनकी लीलाएं प्रसिद्ध हैं, इसलिए उनको ब्रज किशोर कहते हैं, ब्रज का किशोर, और ब्रज कुमार भी कहते हैं। तो ब्रज कुमार की लीला हो गई, अब ब्रज किशोर की लीला सुनिए। तटस्थ पौगंड वय सृत ब्रजे बभू अतुष्ट पशुपाल सम्मत। श्रीकृष्ण और बलराम प्रारंभ में गायों के बछड़ा को चराते थे, वत्स चारण करते थे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे तो बछड़ों को चराने के लिए उनको अनुमति थी। कुछ थोड़ी दूर पर जाते थे, गौएं तो बहुत दूर चली जाती थी, गौओं के बछड़ों को कृष्ण बलराम चराते थे कुछ थोड़ी दूर पर, और बछड़ों को चराते समय ही उन्होंने ब्रह्मा जी को मोह में डाला था, वो लीला हो चुकी है। तो श्री कृष्ण और बलराम बारम्बार नंद महाराज से आग्रह करते थे कि हम अब गौ चराने लायक हो गए हैं, हम अब बहुत बड़े हो गए हैं, हम बलवान हो गए हैं, हमको बुद्धि हो गई है, हमको भेजा जाए वन में। और इसका कारण एक और हो गया कि जिन बछड़ों को श्री कृष्ण बलराम चराते थे तो वे बछड़े सयाने हो गए, तो गोपों ने ऐसा किया कि उन बछड़ों को वे गौओं के साथ भेजने लगे, जो मुक्त स्तन हो गए थे। अब गौओं का दूध वे नहीं पीते थे, गौओं दूसरा बच्चा दे चुकी थी, जो गौएं रखे हैं गांव के होंगे बहुत जल्दी समझ जाएंगे इस बात को, गौओं के बच्चे जब सयाने हो जाते हैं तो उनको गौओं के साथ भेजते हैं जंगल में चलने के लिए। जिन बछड़ों को श्री कृष्ण और बलराम चराए थे ये जब बड़े हो गए तो उनको गौओं के साथ भेजा जाने लगा, तो ये जाना नहीं चाहते थे क्योंकि श्री कृष्ण के चराए हुए थे, तो श्री कृष्ण के वियोग में वे गौओं के साथ नहीं जाना चाहते थे। हाँकने के बाद भी ये जाना नहीं चाहते थे, तो खड़े रहते थे। अच्छा, कुछ ये भी बात होगी कि श्री कृष्ण के जो बच्चे साथी थे वे भी कुछ बड़े हुए तो उनके माता पिता ने उनको अनुमति दे दिया कि तुम लोग गाय चराने जा सकते हैं, तो वे भी श्री कृष्ण का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ये दो समस्या आई थी, श्री कृष्ण के बचपन के साथ ही अब गौ चराने जाना नहीं चाहते थे, श्री कृष्ण के साथ रहना चाहते थे, और बछड़े भी गौओं के साथ नहीं जाना चाहते थे। और उधर श्री कृष्ण बलराम की इच्छा थी कि हम लोग पूरे ब्रजमंडल में घूम घूम करके सबको दर्शन दें, लीला करें, आनंदित करें, और बछड़ों को चराने में बहुत सीमित है, देश तक रहना पड़ता था, तो ब्रज में सभी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब कृष्ण आएंगे हमको दर्शन देंगे, क्योंकि बहुत से जीव हैं जो चल नहीं सकते, जैसे वृक्ष स्थावर जीवनी एक स्थान से दूसरे स्थान चल नहीं सकते, लेकिन वे तो जानते थे कि हमारे प्राण बल्लभ श्री कृष्ण और बलराम यही हैं और कुछ ही दूर बछड़ा चराने आते हैं और हमारे पास नहीं आते हैं। उन वृक्षों को बहुत उत्कंठा थी और वन्य के पशुओं को भी, ये सभी चाहते थे कि कृष्ण बलराम पूरे ब्रजमंडल में घूमे। तो इस कारण से श्री कृष्ण बलराम की बार बार इच्छा होती थी, लेकिन माँ यशोमती यशोदा भेजती नहीं थी, कहती थी नहीं नहीं इन बच्चों को बहुत दूर नहीं भेजना है, कृष्ण बड़ा चंचल है, वन में इधर उधर कुछ हो जाएगा, इसलिए इनको गाय चराने के लिए नहीं भेजना है। नंद बाबा भी मना करते थे, लेकिन कृष्ण बलराम बारम्बार हट कर रहे थे, आग्रह कर रहे थे नहीं बाबा हम सफिशिएंट बुद्धिमान हो गए हैं, हम चला लेंगे गाय, हमको भेजो वन में भेजो। बारम्बार जब आग्रह किए कृष्ण, और चूंकि बछड़े नहीं जा रहे थे, बच्चे भी नहीं जा रहे थे वन में बहुत समस्या आ गई प्रश्न इस तरह से। तो इसलिए एक दिन गोपाष्टमी के दिन यह निश्चित किया गया कि आज श्री कृष्ण और बलराम गौवे चराने जाएंगे और बछड़ा चराने की लीला उनकी खत्म हो रही है। एक गोपाष्टमी पड़ती है कार्तिक शुक्ला अष्टमी को। आज भी ब्रज में वृंदावन में बहुत बड़ा उत्सव किया जाता है, गोपाष्टमी बहुत प्रसिद्ध है। गौओं का पालन करना। जिस दिन श्री कृष्ण गोप हुए, इसके पहले वत्सक थे, गोवत्सक थे, और अब गोप हुए उसी अष्टमी के दिन, इसलिए उसको गोपाष्टमी कहा जाता है। तो उसी गोपाष्टमी से लीला प्रारंभ हो रही है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी से। बहुमतुस्तव पशुपाल सम्मतो, पशुपालन के योग्य मान लिए गए। श्री कृष्ण बलराम को लोगों ने मान लिया कि हाँ ठीक है, गौएं चरा सकते हैं, वन में जा सकते हैं। तो माँ यशोदा कुछ सयाने गोपों को बहुत सतर्क बनाए कि देखना श्री कृष्ण को गौएं हाँकने के लिए इधर उधर मत भेजना, कुछ एक जगह रखना, सब लोग घेर कर रखना, कभी जमुना जी के जल में इसको मत उतरने देना, और हमेशा देखते रहना कभी भी इसको कोई भूख लगे प्यास लगे तो ये ले जाओ भोजन, बारम्बार श्री कृष्ण को खिलाते रहना। और श्री बलराम जी को कहे बलराम तुम कृष्ण का संग कभी मत छोड़ना। श्री कृष्ण से बलराम जी कुछ बड़े थे तो उनको माँ यशोदा समझती थी कि ये समझदार है और बलवान भी है, शरीर से भी कृष्ण की अपेक्षा मोटे थे। श्री बलराम जी को नियुक्त किया माँ यशोदा ने कि बेटा कभी भी कृष्ण का संग मत छोड़ना, साथ में रखना, और आज जा रहे हो वन में लेकिन बहुत जल्दी आज आ जाना, शाम मत करना, संध्या नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार पशुपाल सम्मत, पशुपालन में गोपालन में योग्य मान लिए गए कृष्ण। तो चले पशुपालों ने, गोपों ने भी कहा कि हाँ ठीक है, कृष्ण गोचारण कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से सबकी सम्मति से गोपाष्टमी के दिन बहुत भारी उत्सव हुआ और श्री कृष्ण को गोचारण के लिए अब दूर वन में जाने के लिए अनुमति मिल गई। तो गाश्चार्यम तव सखभि समं पदे वृंदावनम पूर्णमतीव चक्रतुः, सखाओं के साथ गोचारण करते हुए कृष्ण बलराम वृंदावन में घूमने लगे। यहाँ वृंदावन का अर्थ है पूरा ब्रजमंडल, संपूर्ण 84 कोस ब्रजमंडल। तो एक विशेष बात सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वृंदावनम पुण्यम अतीव चक्रतु, वृंदावन को अतीव पुण्यम चक्रतु, अत्यंत पवित्र बना रहे हैं। वृंदावन तो पहले से ही पवित्र है, भगवान का नित्य धाम है, लेकिन पदय ही अपने चरण न्यास से श्री कृष्ण बलराम वृंदावन को अतिशय पावन बना रहे। वृंदावन धाम एक ऐसा धाम है जहां भगवान श्री कृष्ण कभी भी पादुका नहीं पहने, पदत्राण नहीं पहने, बिना जूता के चलते हैं। ये वृंदावन धाम की विशेषता है। तो भगवान श्री कृष्ण के और श्री बलराम के चरण चिन्ह से वो ब्रजमंडल अलंकृत होने लगा, इसलिए अतीव पुण्यम का, अतीव पुण्यम चक्र को, पुण्यम का अर्थ होता है पवित्रता दायक। तो और संस्कृत में ऐसे पुण्यम के बहुत अर्थ होते हैं, पुण्य का अर्थ होता है यज्ञ करना, दान करना, जिससे जीव स्वर्ग प्राप्त करता है, लेकिन वास्तविक धरातल पर पुण्य का अर्थ है जीव की अविद्या का नाश करके भगवान कृष्ण प्रेम देना। तो जो वस्तु कृष्ण प्रेम देने में समर्थ है, जीव के स्वरूपगत धर्म को प्रकाशित करती है, तो उसको पुण्य कहते हैं। तो जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दासत्व, जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, नित्य दास। लेकिन वर्तमान समय में हमारा कृष्ण प्रेम आवरण में पड़ गया है, ढक गया है, सहज कृष्ण प्रेम प्रकाशित नहीं हो रहा है। संसार के प्रति हमारी जितनी लालसा है, जितना प्रेम है, भगवान कृष्ण में प्रेम उतना प्रकट नहीं है। यद्यपि स्वरूप से हम कृष्ण दास हैं, लेकिन वो प्रकट नहीं है। तो जो वस्तु उस प्रेम को प्रकट कर दे उसको पुण्यम कहते हैं। तो श्री कृष्ण का श्रवण और कीर्तन कृष्ण प्रेम को प्रकट करता है, इसीलिए उनके श्रवण कीर्तन को पुण्यम कहा गया, पुण्य श्रवण कीर्तन। श्री कृष्ण के विषय में सुनने पर कृष्ण प्रेम प्रकट होता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कहुना श्रवण आदि सिद्ध चित कराया होता है। तो यह श्री कृष्ण के प्रति सहज अनुराग नित्य सिद्ध वस्तु है। यह ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाहर से लाना है, वो है अपने पास, लेकिन उसको प्रकट करना है। श्रवण कीर्तन जल कराय सचन श्रवण कीर्तन के द्वारा है। तो यह श्रीमद भागवतम सत्ता है, हमारे कृष्ण प्रीति का वर्धन करने में एक सहायक वस्तु है, ऐसा अनुभव किया गया है बारंबार। तो श्री कृष्ण और बलराम वृंदावन को अतिशय पावन करने लगे। अतीव अतीव का अर्थ होता अत्यंत, अतिशय वर्णन से परे अनिर्वचनीय वृंदावन की महिमा बढ़ गई। पदई और सखाओं के चरण पड़ रहे थे वृंदावन में, गौओं के और कृष्ण बलराम के, चक्रतु करने लगे, अति पुण्यम करने लगे। बहुत सुंदर वृंदावन लगने लगा, खासकर के श्री कृष्ण के चरण कमल में वज्र अंकुश ध्वज स्वस्ति कमल आदि के चिन्ह है। तो श्रीकृष्ण जहां भी चलते थे तो उनके चरण विन्यास से पता लग जाता था कि कृष्ण का चरण है, इधर गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया। और पृथ्वी उन चरण चिन्हों को मिटने नहीं देती थी। एक आश्चर्य की बात थी कि श्री कृष्ण आगे आगे भी चलते थे और पीछे से सखा कभी कभी चलते थे, गौएं चलती थी, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के चरण चिन्ह मिट नहीं पाते थे। यह पृथ्वी का स्पेशल सौभाग्य था, वो अपना सौभाग्य सुरक्षित रखना चाहती थी, इसलिए भारत में लिखा गया है कि वो मिट नहीं पाते चरण चिन्ह। और ऐसे जनरली श्री कृष्ण पीछे चलते थे, आगे आगे गौएं चलती थी और पीछे से चलते थे, इसलिए भी नहीं मिट पाते थे। तो वृंदावन को कहा गया है शास्त्र में कि यह वृंदावन ललाट है इस पृथ्वी का। पृथ्वी यदि एक नारी है, महिला है, तो वृंदावन इसका ललाट है, और उस ललाट पर सौभाग्य का जो बिंदु है वो है कृष्ण, ऐसा कहा गया है। वृंदावन विदम मन्ये भालम एवं धरा स्त्रिय सौभाग्य तिलको यत्र, सौभाग्य भूमि श्री कृष्ण तिलको यत्र राजत। यह धरा यह भूमि यह एक महिला है, और वास्तव में यह एक स्त्री है, यह एक भूदेवी है जो भगवान की प्रिया है। तो यह पृथ्वी एक स्त्री है और वृंदावन इसका ललाट है, इसका फोरहेड है, और उस ललाट पर जो सौभाग्य का तिलक है वो है श्री कृष्ण। सौभाग्य भूमि श्री कृष्ण तिलको जत्र राजत। सौभाग्यवती स्त्रियों के ललाट पर तिलक होता है, यह तिलक उनके सौभाग्य का सूचक होता है, इसके पति हैं। अब सभी अंधार भारत वर्ष में प्राय सभी स्त्री धारण करती हैं, तो श्री कृष्ण ही इस पृथ्वी के तिलक हैं, इससे यह भूमि शोभित होती है और वृंदावन इसका ललाट। तो वृंदावन में श्री कृष्ण रहते हैं, तो इस तरह वृंदावन को श्री कृष्ण अतिशय पावन करते हैं, घूमने लगे, लीला करने लगे। यह टीका में श्रीपद सनातन गोस्वामी लिखते हैं, शुक्लाष्टमी कार्तिके स्मृता गोपाष्टमी बुधई तद दिनात वासुदेवभूत गोप पूर्वस्तु वत्सपः। कार्तिक शुक्लाष्टमी के दिन वासुदेव गोप हुए, पहले वत्सप थे। तो इस प्रकार श्री कृष्ण बलराम वृंदावन में प्रथम दिन प्रवेश किए। यद्यपि वृंदावन में पहले भी प्रवेश किए थे लेकिन ब्रज के बिल्कुल निकट रहते थे, गांव के निकट रसोया चराते थे, इसलिए उसको प्रवेश के भीतर नहीं कहा गया। सुखदेव गोस्वामी कहे कि इसके पहले प्रवेश नहीं किए थे, तो अब प्रवेश कर रहे हैं। गोपै गृणद्भिसजसोपलान्वित ससुं पुरस्कृत्य पशव्यमाविश विहर्तु कामः कुसुमाकरं वनम्। इस प्रकार सामान्य रूप से श्री कृष्ण बलराम दोनों के वृंदावन प्रवेश की लीला का वर्णन किए, अब श्री कृष्ण का स्पेशल वर्णन कर रहे हैं। तन माधव माधव अपनी बांसुरी को बजाते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। तन माधव वेणुम उदीरयन गोपै वृत, गोप सखा श्री कृष्ण के साथ हैं, श्री बलराम जी भी हैं और गोप सभी श्री कृष्ण के यश का वर्णन कर रहे हैं। यह वृंदावन की विशेषता है कि श्री कृष्ण के सखा सर्वदा श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं, तो और कोई बातचीत कभी नहीं करते। नया नया श्रृंगार जो कृष्ण करते रहते हैं तो उसी का वर्णन करते हैं, कृष्ण तुम्हारा मुकुट बहुत सुंदर है, तुम्हारी वरमाला बहुत सुंदर है, माता ने यह श्रृंगार धारण कराया है, वो बहुत सुंदर है, ये है वो है। और श्री कृष्ण कोई लीला करते हैं, देखते हैं, चलते हैं, तो उसका वर्णन करते जाते हैं क्षण क्षण में। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोपै स्वजस गृणद्भि, गोप सखा श्री कृष्ण के जस का वर्णन करते जाते हैं। श्री कृष्ण क्षण क्षण में इतने सुंदर लगते हैं कि उनका वर्णन नवीन नवीन लगता जाता है। आप तो ऐसे शहर में रह रहे हैं जहां हजारों न्यूज़पेपर निकलते होंगे, है ना, सैकड़ों हजारों न्यूज़पेपर निकलते होंगे, पत्रिकाएं निकलती हैं, समाचार पत्र निकलते हैं, और किसका वर्णन करते हैं रोज, जड़ जगत का, एक शहर का जब इतना वर्णन हो सकता है, प्राकृत जगत का एक नगर है और उस नगर में रहने वाले लोग कुछ भी कोई डिवाइन गुणों से युक्त नहीं है, लेकिन फिर भी उनका वर्णन करने में रोज रोज हजारों पेपर निकलते हैं, तो फिर अप्राकृत जगत से यदि पेपर निकालना पड़े, भगवान का वर्णन यदि करना पड़े, तो कितना पेपर निकल सकता है रोज रोज, और वास्तव में न्यूज होगा, नया होगा। यह तो ये न्यूज क्या है, तो ओल्ड ससा है, ये सब बातें ओल्ड है। यहाँ ज्यादातर न्यूज पेपर में मरना, चोरी, क्या क्या, यही सब निकलता रहता है। शायद बैकुंठ से न्यूज पेपर निकालना पड़े तो वहां उसमें एक कॉलम में, एक लाइन में भी ये बात नहीं आएगी किसी के मरने का या कोई जोक या कुछ भी है कि नहीं, वो पूरा समाचार पत्र आनंद से भरा रहेगा। आज मैं आ रहा था बनारस से बॉम्बे, तो जबलपुर में बहुत भारी भूकंप हो गया, तो मैं देखा उसने न्यूज पेपर जो भी मिल रहे थे सबने भूकंप का वर्णन, अर्थक्वेक का वर्णन सबसे। तो यही तो इस दुनिया का समाचार है, वही डेड चीजें, मरी हुई चीजें पढ़ते हैं लोग, कोई जीवन नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और उनका जो धाम है, उनके जो परिकर है, तो नित्य आनंदमय है। है कि इसमें भी बहुत से न्यूज पेपर निकालने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा था कि जब मैट्रियल नगर, मैट्रियल जगत का इतना वर्णन किया जा सकता है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का और फिर भगवान का वर्णन कितना में किया जा सकता है, सहज समझ सकते हैं। एक कवि ने लिखा है कि यदि इस पृथ्वी को पूरा किसी मिल में, किसी कारखाना में पीस करके कागज बना दिया जाए, पूरी पृथ्वी को पतला कागज बना दिया जाए, और जितना भी समुद्र है, समुद्र को यदि इंक सिलाई बना दिया जाए, और भगवान के गुणों को, उनके सौंदर्य को, करुणा को, ऐश्वर्य को लिखने के लिए ब्रह्मा जी, शिव जी, सरस्वती, गणेश, शेषनाग, ये सभी विद्वान लाइन लगा लगा करके बैठे अथवा अपना अपना कंप्यूटर लेकर अनंत अनंत वर्षों में भी भगवान के गुणों को ये गिनकर शेष नहीं कर सकते हैं। ये सारी पृथ्वी कागज के रूप में खप जाएगी, सारा समुद्र खप जाएगा, लेकिन भगवान के सौंदर्य और करुणा आदि की जो कथाएं हो कभी शेष नहीं हो सकती। इतना अनंत गुण से वे युक्त हैं, तो उनके साथ जो सखा रह रहे हैं वो नित्य गाते रहते हैं उनका जस,
हरे कृष्णा 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 हरे
हरे,
हरे राम हरे।
कभी कभी हम लोगों से लोग पूछते हैं इसके कहीं शब्द की आप लोग इतनी आवृत्ति क्यों करते हैं। कुछ लोग पूछते हैं अब नए क्यों नहीं जपते हैं ये हरे कृष्णा। जब से सुने हैं देखें तो यही ये बोलते रहते हैं, आपका जी नहीं उठता है। ये अरूप नहीं सकता क्योंकि वास्तव में यह पूर्ण चिदघन है, स्पिरिचुअल है ये हरे कृष्ण महामंत्र। यह वास्तव में इस संसार की वस्तु नहीं है। जैसे हम लोग रेडियो पर शब्द सुनते हैं कभी कभी, तो हो सकता है कि वो रेडियो यहाँ का वो शब्द यहाँ का नहीं है। जैसे हम बॉम्बे में सुनते हैं तो दिल्ली से शब्द आता है या लंदन से शब्द जाता है, तो लंदन का शब्द इंडिया में सुनाई पड़ता है। तो यह शब्द कहाँ से आया है? गोलोक एर प्रेम धन हरि नाम संकीर्त, यह गोलोक से ट्रांसमिटेड होता है। ये यहाँ की वस्तु नहीं है। देखने में ऐसे लग रहा है कि जैसे अन्य शब्द हैं वैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र भी है, भगवान का कोई नाम ऐसा, लेकिन वास्तव में यह गोलोक का है। यह दिव्य जगत से ध्वनि आई हुई है, किस लिए? हमको उठाकर वहां ले जाने के लिए। इस तरह से गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति ना जन्मी लग के नेता है। शोक की बात है कि रति इसमें नहीं होती है। तो हम लोग बताते हैं कि वास्तव में यह दिव्य वस्तु है, जैसे जीने से कभी ऊब नहीं होती है, हम निरंतर जीना चाहते हैं, है कि नहीं? कोई अब नहीं सोचता नहीं अब बहुत दिन जी लिया आप कहते हैं। जीने से कोई ऊब रहा है नहीं? भौतिक क्रियाएं हैं, बिल्कुल मैटेरियल एक्टिविटीज है, उनसे भी हम नहीं उब रहे। रोज खाना, रोज शरीर धोना, नहाना, इससे भी नहीं उब रहे। जीने से कहां से उबेंगे? तो श्री कृष्ण जीवन के भी जीवन है, आत्मा के भी आत्मा है, चेतनस चेतना नाम, चेतन के भी चेतन है। तो उनके जो गुण नाम है वो नित्य फ्रेश रहते हैं। भगवान शेषनाग तो अनादि काल से उनका गुण गाते रहते हैं, लेकिन फिर भी गुण नित्य नए नए लगते हैं। भगवत गीता वही है लेकिन आज भी नया नया फ्रेश है वह। दूसरा न्यूज़पेपर खरीदेंगे तो एक बार पढ़ने के बाद बासी हो जाता है ना, स्टेल। यहाँ तो मॉर्निंग न्यूज, मिड डे न्यूज, इवनिंग न्यूज, तो मॉर्निंग वाला मिड डे में बासी हो गया, मिड डे वाला संध्या को बासी हो गया, फेंकते जाते हैं। रद्दी कागज के भाव कोई नहीं लेना चाहता, फेंकते जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के गुण नित्य नवीन है। एक भक्त ने हमसे प्रश्न किया था एक बार भारतवर्ष में कि भगवान कृष्ण के सखा श्री कृष्ण में क्या पाते हैं कि रात दिन उनकी कीर्ति गाते रहते हैं। जब भी भागवत में वर्णन पाएंगे कृष्ण के सखा कृष्ण का कीर्तन करते हुए चलते हैं, हमेशा गाते रहते। कोई सौंदर्य की बात कहता है, कोई उनके करुणा की, कोई किसी लीला की, कोई किसी लीला की, हमेशा वर्णन करते रहते। तो यहाँ पर ये वर्णन आ गया, स्वजसह गृणद भी, श्री कृष्ण के यश को गोप सखा गाते चलते हैं, बलान्वित श्री बलराम जी के साथ। पशुन पुरस्कृत पशव्यम आवश्यक, तो श्री कृष्ण पशुओं को आगे करके, पशुन पुरस्कृत है, पूरा मतलब सामने आगे करके, पशव्यम आवश्यक, चरागाह में वन में प्रवेश करते। भगवान श्री कृष्ण की यह वन प्रवेश लीला बहुत मधुर है और सुखदेव गोस्वामी को कृष्ण भक्त बनाने में इस लीला का हाथ है। श्री कृष्ण के दो गुणों ने आकृष्ट किया सुखदेव गोस्वामी। एक तो उनकी करुणा, पूतना का जो उद्धार किया भगवान कृष्ण ने, तो उस लीला की याद करके, उसका श्रवण करके सुखदेव गोस्वामी भक्त हो गए। अहो वकीलम स्तनकाल कूटम जिघांसया पाये दप्य साधु लेभे गतिम धातृष्टांत तुण्यम कम्वा दयालु सदनम ब्रजेम। श्री कृष्ण के विरह में उद्धव जी यह श्लोक बोले हैं कि पूतना अपने स्तनों में विष लगाकर कृष्ण को मारने गई थी, लेकिन ऐसी क्रूर हृदया पूतना को भी जिन्होंने माता यशोदा की गति दे दिया, उन कृष्ण से पढ़ करके कौन दयालु है जिसकी शरण मैं लूं। अब इस दया की कोई सीमा है? श्री कृष्ण को मारने के लिए गई थी पूतना, जिस दिन कंस के हाथ से योग माया दुर्गा उड़ गई, उसने आकाशवाणी की, उसने सामने से बोला कि कंस तुम बच्चों की हत्या मत करो, तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। तो कंस उसके बाद देवकी वसुदेव को छोड़ करके मीटिंग किया अपने मंत्रियों के साथ, आधी रात को मीटिंग बुलाया फोन करके, जैसे भी सभी मंत्रियों को बुलाया, कहा कि देखो ऐसी ऐसी बात हो गई है, देवकी के गर्भ से विष्णु जन्म नहीं लिया, कौन जन्म लिया, तो मेरी इष्टदेवी ने जन्म ले लिया, तो मेरी इष्टदेवी दुर्गा जी ने जन्म लिया है, और उसने कहा है कि तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। दुर्गा जी ने भी छिपा करके कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा कि इसी जेल में और एक दो घंटा पहले जन्म लिया है उन्हें कहीं पर जन्म ले चुका है तुम्हारा पूर्व शत्रु। तो कंस मीटिंग किया मंत्रियों से, ऐसे मंत्रियों से जो बिल्कुल बुद्धू थे, वो कुछ नहीं जानते थे, उन्होंने पूछा क्या करना चाहिए हमें, हमारा बैरी जन्म ले चुका है। तो उन दुर्बुद्धि मंत्रियों ने यह सलाह दिया, जब आपको मारने वाला जन्म ले चुका है तो कितने दिन का होगा लगभग? तो कंस कहा कि होगा क्या, हो सकता है 10 दिन का हो या 20 दिन का हो या 10 दिन के अंदर का हो। तो मंत्रियों ने कहा अरे अधिक से अधिक 1 महीने का, यही ना, ठीक है एक काम किया जाए, इस पूरे ब्रजमंडल में या मथुरा जिले में जनपद में जितने भी बच्चे 1 महीने के अंदर के जन्म लिए हैं सबको मार दिया जाए, उसी में से होगा एक। तो 6 बच्चों को मारने के कारण कंस रो रहा था देवकी वसुदेव के सामने, उनको जेल से मुक्त किया और अपने पाप की बात कह करके रो रहा था कि मैं बहुत बड़ा पापी, और मंत्रियों के साथ में पड़ा, तब यह योजना बन गई कि 1 महीने के भीतर के जितने बच्चे हैं सबको मार देना चाहिए। कुसंग से ऐसा हो गया, ऐसा तो क्या उपाय किया जाएगा बच्चों को मारने का। जब उनकी मीटिंग चल रही थी तो पूतना ने कहा, पूतना चिल्ड्रन किलिंग कमीशन का अध्यक्ष बन गई, वो अध्यक्ष बन गई, और उसने कहा कि कोई लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बहुत माया जानती हूँ, कपट जानती हूँ, मैं अपने स्तन में हलाहल जहर लगा करके जाऊंगी और बस दूध पिला पिला कर बच्चों को मार दिया करूंगी, और किसी को जाने की जरूरत नहीं। तो कंस ने कहा ठीक है। कंस ने यह कहा कि सबसे पहले तुम्हें ब्रज में जाना चाहिए, क्योंकि जो नंद है यह वसुदेव का मित्र है, भाई है, और मैंने सुना है कि उसके पास भी उसको एक बच्चा हुआ है, इसको खबर लग जाती थी, मैं ऐसा सुना हूं कि उसको भी एक बच्चा हुआ है, तो कहीं वही मेरा शत्रु ना हो। तो वसुदेव का पुत्र बनने वाला था विष्णु, तो हो सकता है वसुदेव का न बन करके नंद का बन गया हो, इस तरह से उसको शंका हो रही थी। तो उसने भेजा था स्पेशली इंस्ट्रक्शन दे करके पूतना को, तो पूतना गई, कितना क्रूर हृदय था, बहुत सुंदर वेश बनाई लेकिन हृदय छुरे की धार के समान तीखा था उस, और रोहिणी जसोदा दोनों वहीं पास में थी, और जाकर के कहें कितना लाला सुंदर है, कितना अच्छा है, कहकर को उठा ले, गोद में उठा ले। उन लोगों ने मना नहीं किया और अपना विस्मय स्तन देने लगे पीने के लिए। श्री कृष्ण पीने लगे, छोड़े नहीं और प्राण के साथ ही पिए। लेकिन मरने के बाद पूतना को माता की गति मिली, नित्य लीला में भगवान ने उसे अपनी माँ बना लिया। यह है श्री कृष्ण का दान। तो वहां पर कैनुत्य न्याय सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब विष युक्त स्तन देकर पूतना माता की गति पा गई, उसी श्री कृष्ण को जो श्रद्धा से कुछ देते हैं उनके शुभ गति में क्या संदेह हो सकता है। आज कोई श्री कृष्ण को कुछ लाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम या जीवन वचन जो कुछ भी है अर्पित करते हैं श्रद्धा से, हम श्री कृष्ण के सेवक हैं और श्री कृष्ण को अर्पण करना हमारा धर्म है, उन्होंने ही सब कुछ दिया है। श्रद्धा से यदि कोई कृष्ण को कुछ देता है तो वह क्यों नहीं भगवान की नित्य लीला में जाएगा, जबकि विष दे करके वो माता की गति पा गई। तो यह है श्री कृष्ण की कृपा, सहज कृपा है, कृपा के समुद्र है। अन्य जीवों में जो कृपा होती है वो एक कृपा का एक बोतल भी नहीं है, और श्री कृष्ण कृपा के समुद्र है। ये वर्णन किया गया है शास्त्रों में कि हम लोगों में जो कृपा है कितनी है, एक सीख को लेकर के आप किसी लोटा में डालिए, सिंक समझते हैं सिंक, हाँ एक एक्स्ट्रा तिल को लेकर के एक लोटा के पानी में डालिए और उसको लेकर के आप ऐसे छिड़किए तो उसके हजार हजारों कण बनेंगे, सहस्रों कण बनेंगे। तो एक कण जो है उतनी ही कृपा हमारे हृदय में है, और भगवान के हृदय में कितनी कृपा है अनंत समुद्र के समान। हम तो देखे हैं कभी कभी इस जगत में अपना पिता भी क्रोधित हो जाता है अपने बेटा पर, बेटे पर भी कृपा नहीं रह पाती। कभी कभी अपनी पत्नी से भी आदमी कहता है बस इस समय चुपचाप बैठो हमसे बोलो मत, अच्छा नहीं लग रहा है, कृपा सूख गई कृपा भरा नहीं रहा है तो स्नेह इस तरह सूख जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो स्नेह है जीवों के प्रति, सुहृदम सर्वभूतानां, अनादिकाल से उनकी कृपा बनी हुई है। यहां तक कि भगवान को कोई माने या मत माने लेकिन सबको हवा पानी पृथ्वी सब दे रहे हैं, यहां तक निराकार कहने वालों को भी वो पानी दे रहे हैं पीने के लिए, ये भोजन करने के लिए दे रहे हैं कि नहीं। भगवान सबसे अधिक सुंदर व्यक्ति हैं लेकिन इनके विषय में यहां से निराकार कहते हैं, वो निराकार उनको भी सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, ये है उनकी करुणा। जानते हैं कि ये पागल है, हमारे विषय में गलत बोल रहा है लेकिन करें क्या पिता है और पिता के प्रति पुत्र यदि हीन वाक्य भी बोले तो क्या कहें। कोई पुत्र है और अपने पिता के विषय में कोई पूछे, उसके पिता के विषय में कोई पूछे कि तुम्हारे पिताजी कैसे हैं तो वो कहते वो तो निराकार है तो निराकार कह देने से अब उसको प्रणाम नहीं करना पड़ेगा, भोग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि निराकार तो खाएगा पिएगा नहीं है कि नहीं, तो इसलिए भक्ति से पूजा से पिंड छूट जाएगा और केवल ध्यान का एक नाटक चलता रहेगा कि ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। ऐसे ही माँ ने जिस दिन जन्म दिया था तुमको और केवल ध्यान करती तुम्हारा तो पालन पोषण हो जाता ना आज माता पिता कहें अपने बेटे के लिए हम तुम्हारा केवल ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं। वास्तव में इन लोगों ने इस जगत में भक्ति का सत्यानाश कर दिया है। जो निर्विशेषवादी है, जो निराकारवादी है, भगवान के प्रति प्रेम इन लोगों ने खंडित कर दिया है। निराकार वस्तु से कौन प्रेम करता है, कोई नहीं। आज यहां मान लीजिए हम बैठे हैं कि कोई खबर दे कि आपकी पत्नी निराकार हो गई आज से, तो निराकार हो गई तो हो गई, अब क्या, जब तक साकार थी तब तक प्रेम था है कि नहीं जब निराकार हो गई तो अब क्या है। जिन लोगों को वास्तव में भक्ति नहीं करनी है, भगवान से कोई संबंध नहीं रखना है, वास्तव में जो पागल हैं प्रकार के बहुत ग्रॉसेस्ट इग्नोरेंस, वो कहते हैं कि भगवान निराकार, ये समझ लीजिए निश्चित। उनका कोई प्यार नहीं है कृष्ण से, कोई संबंध नहीं है, भगवान के दिव्य स्पिरिचुअल फॉर्म को, लीला को, नाम को समझते ही नहीं। तो हमें इस बात को समझना चाहिए। और सबसे पहले जब करुणा का वर्णन किया जाता है तो भगवान की लीला आती है, तो सुखदेव गोस्वामी ने ये करुणा की लीला सुना और इसके बाद बरहा पीडम नटवर बपुर कर्ण युग कर्णिकार विभ्रम वास कनक कपसम वैजयंतीम च माला रंध्रान वेर रधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद कमलम प्राविशद गीत कीर्ति। वृंदावन में श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं, बांसुरी के छिद्रों पर अपनी उंगली फिरा रहे हैं और बांसुरी को अपने अधरामृत से सिक्त करके पूरे विश्व का आलिंगन कर रहे हैं। उस नाद ब्रह्म द्वारा सखा कीर्ति गा रहे हैं और झूमते हुए नाचते हुए कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करते हैं। इस सौंदर्य ने सुखदेव गोस्वामी को खींच लिया, श्री कृष्ण के इस सौंदर्य ने और करुणा ने, दो श्लोकों ने उनको बाध्य कर दिया भागवत पढ़ने के लिए। लौट करके आए और भागवत पढ़े। ये है वृंदावन प्रवेश की लीला। पशुओं को आगे करके श्री कृष्ण लौट वन में प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रवेश कर रहे हैं तो सीधे साधे श्री कृष्ण प्रवेश नहीं करते हैं, नाचते हुए प्रवेश करते हैं। अस्तम वृंदावन बिहारी कृष्ण है और द्वारका बिहारी या मथुरा बिहारी या साकेत बिहारी जैसे सीधे साधे नहीं चलते हैं। चलते हैं इधर, देखते हैं इधर, नाचते हुए झूमते हुए। खड़े भी होते हैं तो सीधे खड़े नहीं होते हैं, तीन जगह से टेढ़े खड़े होते हैं, त्रिभंग ललित कहते हैं, है ना। हम लोगों में कोई भी ऐसे मंदिर नहीं है जिसमें कृष्ण सीधे खड़े हैं। त्रिभंग सुंदर, ग्रीवा टेढ़ी, पैर व्यत्यस्त, पाद दाहिना पैर बाएं भाग में है, बाएं पैर दाएं भाग में है, ऐसे खड़े रहते हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण त्रिभंग ललित हैं, उसी तरह से उनकी भाषा भी टेढ़ी, उनकी पाग भी टेढ़ी, उनकी ग्रीवा टेढ़ी, उनकी लीला टेढ़ी, झूमते हुए नाचते हुए प्रवेश करते हैं। तो प्राविशद आविशद किस लिए प्रवेश किए वृंदावन में? विहर्त काम, विहार करने की लालसा से। वृंदावन इतना महान है, इतना मादक है कि श्री कृष्ण को भी उसमें रमने की इच्छा होती है। रमण का अर्थ है कि वृंदावन में खेल करके, अवगाहन करके, घूम करके श्री कृष्ण को भी सुख मिलता है। जो सुख घन है, आनंद घन है, आनंद जिनसे विकीर्ण होता है, सबको प्राप्त होता है। परमानंद घन मूर्ति भगवान श्री कृष्ण भी वृंदावन में प्रवेश करके आनंदित होते हैं। इससे वृंदावन की महिमा समझनी चाहिए कि भगवान को भी सुख देने वाला धाम है वृंदावन। तो विहर तो काम, विहार करने की लालसा से श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करते हैं। कथम भूतम वनम, वृंदावन कैसा है? सुखदेव गोस्वामी यहां वर्णन करते हैं, कुसुमा करम, कुसुमा नाम आकरम, जहां पुष्पों का, पुष्पों की राशि है, आकर खजाना है वृंदावन। वृंदावन धाम में सब जगह पुष्प ही पुष्प है। पुष्प को संस्कृत में कुसुम भी कहते हैं। कुसुम आकरम, आकर मतलब खान, सब तरह के पुष्प वृंदावन में। आज जो लोग वृंदावन में जाते हैं, ब्रज में जाते हैं, तो बाह्य दृष्टि से तो वहां पुष्प नहीं है इस समय, लेकिन जिनको आंतरिक दृष्टि प्राप्त है, आज भी वृंदावन में देखते हैं कि वो समृद्ध है पुष्पों से, चिंतामणि भूमि है, सब कुछ चिन्मय है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं तो सब जगह कुसुम ही कुसुम, कुसुम ही कुसुम है, गोपों से घिरे हुए प्रवेश कर रहे हैं। श्री कृष्ण और बलराम दोनों हल लिए रहते हैं कंधे पर, और ऐसा कहा जाता है कि ब्रज में भगवान श्री कृष्ण गोचारण के इंचार्ज थे। गऊं के रक्षक, और श्री बलराम जी फार्मिंग खेती करते थे, वे हल लिए रहते हैं इसलिए हलधर, वे खेती करते थे। लेकिन जो भी हो, प्राय श्री कृष्ण के साथ वन में प्रवेश करते थे। तो दो बार यह बात कही गई है कि श्री कृष्ण वृंदावन में खेलने के लिए, रमने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। तो फिर पुनः वृंदावन का वर्णन करते हैं। तन्मंज घोषाल मृग द्विजाकुलम महान मन प्रख्यपय सरस्वता। तन्मंज घोषाल मृग द्विजाकुलम, वह वृंदावन मंजू घोष वाले, बहुत सुंदर कंठ वाले भावरे मृग और पक्षियों से व्याप्त था। वृंदावन में सब जगह भावरे थे, फूलों पर बैठे हुए थे और भावरे भंधन 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 गाते रहते। भावरों में भगवान ने एक अद्भुत विशेषता दी है। भावरों के जो पंख होते हैं, जिन लोगों ने देखा होगा वे समझ सकते हैं, वो जब उड़ते हैं तो हारमोनियम के पत्ती जैसे उसमें से आवाज निकलती रहती है, एक एक भौंरे के, और उसके साथ वो गाते भी। भौंरे भ्रमर एक ऐसे जीव है जिनको भगवान ने वाद्य और सुंदर कंठ दोनों दिया है, ये बहुत सुंदर गाते रहते हैं। भौंरे और मृग, मृग का अर्थ पशु होता है अथवा हरिण, ये भी बहुत सुंदर बोलते हैं। वृंदावन में जो भी पशु हैं बहुत सुंदर बोलते हैं। द्विज, द्विज का अर्थ होता है पक्षी, अनेक प्रकार के कोयल हंस आदि पक्षी हैं जो गा रहे हैं वृंदावन में। अभी वृंदावन भारतवर्ष में बसंत ऋतु चल रहा था इस वैशाख पूर्णिमा तक, तो सब जगह कोयल की आवाज सुनाई पड़ती है, कुहू कुहू। इधर कोयल होती है ना? नहीं, इधर कोयल नहीं। हाँ, क्योंकि मैं सुना नहीं, और उधर कहीं भी कोयल बोलती है। कुजत कोकिल हंस सार स्मरा, किरणे मयूरा खुले। और मयूर, मयूर भी नहीं दिखाई पड़ते हैं, कहीं कहीं है मयूर, कोयल, दात्यू, पपीहा, ये सब गाते रहते हैं, बहुत सुंदर कंठ। और वृंदावन के वन में रहने वाले पक्षियों का तो कहना है, तो पक्षी को द्विज कहा जाता है। द्विज का अर्थ होता है दो बार जन्म लेने वाला, एक बार ये अंडा के रूप में जन्म लेते हैं और दूसरी बार अंडा को फोड़ करके जन्म लेते हैं, इसलिए उनको द्विज कहा जाता है। मनुष्यों में जिनका उपनयन संस्कार होता है तो उनको द्विज कहते हैं, पर पक्षियों को बिना उपनयन संस्कार कहीं द्विज का है। पक्षियों में एक नियम बहुत अच्छा है, ये कुछ ग्रंथों में लिखा गया है, पक्षियों में स्वदार संग्रह का नियम बहुत अच्छा है। स्वदार संग्रह मतलब पत्नी और पति का बहुत दृढ़ संबंध है। पक्षी जगत में व्यभिचार नहीं है, एक पक्षी एक मादा पक्षी से संतुष्ट रहता है बस, और उनमें व्यभिचार नहीं है। शास्त्र कहते हैं वृंदावन के जो पक्षी हैं, इन पक्षियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर संबंध है। एक तो दिन भर जहां भी जाते हैं तो भावरों के साथ गाते रहते हैं, कभी कभी कोयल के कंठ में मिला करके कंठ और कुहू कुहू भी करते रहते हैं, और मोर का तो पंख ही धारण करते हैं, जो मोर जैसे नाचते भी हैं। तो इन पक्षियों का, पशुओं का, हरिण आदि का, और अली अली माने भावरों के समूह का वर्णन, इन सबसे आकुलम वृंदावन व्याप्त है। और महात्मन प्रख्यपय सरस्वता वाते में जुष्टम सतपत्र गंधिना, और वृंदावन में वायु कैसा फैला है, कैसा वातावरण है, मंद शीतल और सुगंध हवा, सुगंधित हवा है। शीतल का यहाँ अर्थ है समशीतोष्ण, न गर्मी है और न ज्यादा ठंडा है, अधिक ठंडा नहीं अधिक गर्मी नहीं। इस शरद ऋतु का वर्णन कार्तिक महीने का, तो वृंदावन के सरोवरों का जल बिल्कुल निर्मल है, निर्मल मलहीन बिल्कुल स्वच्छ जल है। कैसा जल? जैसे महात्माओं का मन, महान मन, जैसे भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के मन में कोई मल नहीं होता है, जितना महात्माओं का मन शुद्ध होता है उतना ही वृंदावन के सरोवरों का जल शुद्ध है। वृंदावन के जो सरोवर हैं उनका जो जल है बिल्कुल निर्मल है। कैसा? जैसे किसी संत का, किसी भक्त का मन शुद्ध है। ये सुखदेव गोस्वामी उपमा दे रहे हैं, जिनके हृदय में केवल कृष्ण का प्रेम है, स्नेह है और संसारी कोई कामना नहीं है, उनके हृदय को कहा जाता है बहुत शुद्ध, श्री कृष्ण का रस भरा हुआ है। वृंदावन के सरोवरों के जल का तुलना उपमा दे रहे हैं महात्माओं के मन से, महान मन प्रख पया सरस्वती, इतने शुद्ध जल है और उन शुद्ध जल में सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं अनेक प्रकार के। कार्तिक का महीना है, वातावरण ऐसा है, इतना सुंदर जल खिला हुआ है, सुंदर कमल खिला है और कमल के पुष्पों के पराग को लेकर के हवा बह रही है, तो सरोवर के जल से टकरा करके और कमल के पुष्पों से टकरा कर हवा चल रही है, तो हवा में सुगंध फैली है, संपूर्ण ब्रजभूमि की हवा में सुगंध है। कैसी सुगंध? कमल पुष्प की सुगंध है, कमल के पराग की सुगंध, सुगंधित हवा है और समशीतोष्ण हवा है और मंद समीर, धीरे धीरे हवा चल रही है। हवा जोर से चलती है तो अच्छी नहीं लगती है ना, मंद समीर अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण उस वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। हवा को कहा गया है सतपत्र गंधिना, ऐसे कमल हैं जिनको सतपत्र कहा जाता है। सतपत्र का अर्थ होता है जिसकी पंखुड़ियों में 100-100 पत्ते हों। इधर हम लोग जो कमल देखते हैं उसमें 100 नहीं होते, अष्टदल कमल कभी कभी हम देखते हैं। जैसे हम लोग कमल बनाए हैं प्रभुपाद सेंटेनरी में, तो कितने पेटल्स हैं? 10 से 12 पेटल्स, लेकिन वो पेटल्स 100 होते हैं। एक ऐसा कमल होता है जिसको सतपत्र कहते हैं, 100 पेटल्स सतपत्र। तो ऐसे लोटस कमल वृंदावन के सरोवरों में खिले हुए और उनसे स्पर्श करके हवा फैल कर पूरे वृंदावन को सुवासित करती, बहुत सुंदर है गंध हवा में। तो ऐसी हवा का आस्वादन करते हुए भगवान घूम रहे हैं। निरीक्ष रंतुम भगवान मनोदत है, भगवान 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण उस वृंदावन में रमण करने की इच्छा से घूम रहे हैं। तो अब वृंदावन वासियों का वर्णन कर रहे हैं, वृंदावन बिहारी का वर्णन कर लिए, उसे श्री कृष्ण के अंगों का वर्णन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उसका वर्णन बाद में आएगा और पहले भी आ चुका है। श्री कृष्ण के वासुरी वादन का वर्णन किया गया, लेकिन सिर पर मोरपंख है और बहुत स्पेशल श्रृंगार है आज के दिन, और आज श्री कृष्ण को माना जा रहा है कि अब कुछ बड़ा हो गया है, तो स्पेशल श्रृंगार है, स्पेशल वस्त्र है और घूम रहे हैं। सतत्र तत्रारुण पल्लव श्रिया प्रस्फल प्रसून भरेण पादय स्पृशन शिखान्विक्ष वनस्पति मुदान स्मयं निवाहाग्रजमादि पुरुष। आदि पुरुष श्री कृष्ण तत्र तत्र स्थाने स्थाने सर्वत्र, आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ सखाओं के साथ चल रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि जहां वे जा रहे हैं वहां पर वृक्ष की शाखाएं झुकझुक कर कृष्ण को प्रणाम कर रही हैं। वृक्ष झुक जाते थे, जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे जिनमें फल और फूल लगे हुए थे, जो श्री कृष्ण के निकट आते ही झुक जाते थे, श्री कृष्ण हमारा फल लेंगे, हमारा पुष्प लेंगे, पुष्प लेकर अपना श्रृंगार करेंगे, फल लेकर के खाएंगे और श्री कृष्ण को हम प्रणाम करेंगे, प्रणाम कर रहे हैं, इस दृष्टि से वृक्ष झुक रहे थे। स्पष्ट शब्दों का वर्णन है कि फल प्रसून रूप भरे पादय स्पृशक, ऐसे वृक्षों में जब फल लगता है या फूल लगते हैं तो वृक्ष झुक जाते हैं, लेकिन वृंदावन के वृक्ष तो झुके हुए हैं ही, परंतु श्रीकृष्ण और बलराम के आने पर वे विशेष झुक जाते हैं चरणों में, क्योंकि वृंदावन के जो वृक्ष है वो चिन्मय है और श्रीकृष्ण के नित्य परिकर। तो श्रीकृष्ण जहां जहां जाते हैं उनको फल और फूल देने के लिए झुक जाते हैं, वो ज्यादा ऊंचे रहेंगे तो कृष्ण फल तोड़ नहीं पाएंगे। इस तरह वृंदावन में श्री कृष्ण को फल प्राप्त होता है। वास्तव में वृक्षों के साथ भगवान की भक्ति का बहुत संबंध है। श्री कृष्ण गीता में जो मांग कर रहे हैं कि हमें अर्पण करो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो इसमें तोयम को छोड़ करके बाकी तीन वृक्षों का उत्पादन, पत्रम पुष्पम फलम, ये वृक्षों से आते हैं। यहां देखिए फल है, ये पुष्प, ये वृक्ष से आए है ना। कोई आदमी ऐसा उत्पादन नहीं कर सकता, करते भी हैं प्लास्टिक का तो उसमें कोई गंध नहीं, कुछ नहीं, और वो भी करते क्या है, भगवान की वस्तुओं को लेकर के ही वे उत्पादन करते हैं, स्वयं नहीं बना सकते है ना। कोई प्लास्टिक अपने भीतर से तो निकाल नहीं सकता है, कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, कुछ भी प्लास्टिक का भी फूल बनाना हो तो वो भी कहीं बाहर से ही लेना पड़ेगा, रंग लेना पड़ेगा। ये भगवान की अजीब सृष्टि है, कई तरह का फूल बनाए हैं और अलग अलग रंग, एक एक ये कहीं फूल में कई रंग होते हैं। देखिए पीला पुष्प है, हरा है, एक ही पुष्प में हरा रंग भी, पीला रंग भी, लाल भी, एक ही जमीन से हजारों हजारों प्रकार के रंग हैं, स्वाद हैं, सब धरती से निकल रहे हैं। ये सब भगवान देते हैं। तो मैं यह कह रहा था कि भगवान की भक्ति का संबंध वृक्षों से बहुत घनिष्ठ, और आचरण का भी, भक्त के आचरण का चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तरो रिव सहिष्णुना, चाहे तरो रपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बनना चाहिए और ऐसे कीर्तन करना चाहिए। तृणादपि सुनिचन, तृण भी एक वृक्ष का ही अंग है, घास है, उससे ज्यादा नम्र होना चाहिए। भगवान भी जब इस जगत में आते हैं वैष्णवता सिखाने के लिए तो उनको वृक्षों से ही सीखना पड़ता है, देखो वृक्ष जैसा बनो, तृण जैसा बनो, आदमी जैसे बनो, भगवान ने कभी नहीं कहा आदमी जो सब बेकार होते हैं उनसे क्या सीखना है, वृक्ष जैसा रह करके कृप्त नहीं हो सदा हरी। भगवान ने कभी नहीं कहा कि इस राजा जैसा बन करके या सांसद जैसा बन करके भजन करो, नहीं करो, वृक्ष जैसा बनो। भगवान श्री कृष्ण की लीला का संबंध वृक्षों से बहुत घनिष्ठ है, वृक्षों से, पशुओं से बहुत संबंध है भगवान का। तो जहां जहां जाते हैं तो सबसे पहला सौभाग्य वृक्षों को दे रहे हैं, वृक्ष झुक जाते हैं, सब जगह वृक्ष हैं, सब जगह झाड़ हैं और झुक जाते हैं। कैसे वृक्ष झुक रहे हैं, अरुण पल्लव स्त्रिया, उनकी बड़ी सुंदर शोभा है, बड़े बड़े सुंदर है, किस तरह से लाल लाल पत्ते निकले हैं, नए नए कुंपले, नए नए पत्ते निकले हैं, लाल होते हैं, उससे उनकी शोभा बहुत सुंदर बढ़ी हुई है। और फल प्रसून उरु भरे रहा, फल और प्रसून, फल मतलब फ्रूट्स और प्रसून मतलब फ्लावर्स पुष्प, फल और फूल से भरे हुए, इतना भार है, वो झुकते हैं। और उरु भरत, भरत का संस्कृत में अर्थ होता है उपहार, उपहार देते हैं, अपने सिर पर फल और पुष्प का भार लिए, उपहार लिए, झुकते हैं, कहां पादयो, श्रीकृष्ण के जुगल चरण में झुक रहे हैं, पादयो स्पृशत, श्री कृष्ण के चरण कमल का जो स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, सिखाए जिनकी सिखाए, जिनका ऊपरी भाग श्री कृष्ण के चरण को स्पर्श कर रहा है, आप ये समझ सकते हैं कि कितना अधिक वृक्षों पर झुकना पड़ता होगा। झुकने में उनको आनंद हो रहा है। जहां कृष्ण जाते हैं तो ऊंचे ऊंचे वृक्ष भी तत्काल झुक जाते हैं, और कभी कभी दोनों तरफ से वृक्ष झुकते हैं तो श्री कृष्ण की गति में अवरोध हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाते थे। वो झुकते हैं इसलिए कि कुछ तो पुष्प अर्पण कर देते थे वे स्वयं ही, और कुछ को चाहते थे कि श्री कृष्ण के हाथ का स्पर्श मिलना चाहिए, श्री कृष्ण के कर कमल का स्पर्श लेने के लिए पुष्प निकट आते थे। वृक्ष ऐसे सचेतन है, स्पिरिचुअल है वृंदावन के, तो श्री कृष्ण के हाथों के पास पुष्प आ रहा है तो श्री कृष्ण तोड़ते थे, पिकअप करते थे और कहते थे श्री बलराम से, कितना सुंदर वृक्ष है, कितना सुंदर पुष्प है, इस गंध को सूंघिए। भगवान सूंघते थे, श्री बलराम जी को सुंघाते थे ऐसे सब, और किसी किसी सखा से कहते हैं कि इसके पुष्प तोड़ लो और माला बनाने लायक है, इसे बनमाला बननी चाहिए। कोई ऐसा वृक्ष नहीं था जिसके पुष्प को भगवान ने स्वीकार न किया, क्योंकि वे सबके हृदय की बात जानते हैं। वृंदावन के वृक्षों का पुष्प चयन कर रहे हैं, और फल श्री कृष्ण को फल है, दुकान से भोग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ब्रज में। अब तो इधर फल मिलते हैं, कच्चे तोड़ लिए जाते हैं और कैसे कैसे ढंग से पकाते हैं, इसे कोई स्वाद नहीं होता। डायरेक्ट वृंदावन में वृक्षों से पुष्प स्वीकार करते हुए अपने अग्रज से इस प्रकार बोलते हैं। श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए पशु आ रहे हैं, हरिण आ रहे थे, वृक्ष आ रहे थे, भौरे गा रहे थे, पक्षी गा रहे थे, जहां जहां कृष्ण चल रहे थे तो वृंदावन के सभी पक्षी उड़ उड़ करके उनके साथ चलते थे, शाखाओं पर, कोई ऊपर कोई वृक्ष की शाखाओं पर, और कुछ पशु साथ साथ चलते थे, हरिण आदि भौरे गाते हुए चलते थे। तो इन सबको देख करके भगवान श्री कृष्ण अपने मन के भावों को श्री बलराम जी से व्यक्त कर रहे हैं। कोई हमारी हमसे प्रेम कर रहा है तो मेरा मनोभाव क्या है वो भी जानना चाहता होगा, कि वृक्षों की सेवा को भगवान स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हरिण के विषय में क्या उक्ति है, भंवरे के विषय में, मयूर के विषय में। तो श्री कृष्ण बलराम जी से इस प्रकार बोलते हैं, समस्त ब्रजवासियों के, मतलब चर और अचर सबके प्रेम भाव को अनुमोदित करते हैं, सबका अभिनंदन कर रहे हैं, ये भगवान की विशेषता है। तो भगवान चार श्लोकों में श्री बलराम जी से बातचीत कर रहे हैं। श्री भगवान वाच, अहो यमी देव बरामचमरार्चितं पादाम्बुजं ते सुमनः फलार्हणं नमन्तु पादाय शिखाभिरात्मना तमोपहत्यै तरुजन्मजत्कृतम्। श्री कृष्ण के चरणों में वृक्ष फल फूल अर्पित कर रहे हैं, इसको श्री बलराम जी के लिए कह करके अभिनंदन करते हैं भगवान कृष्ण। कहते हैं, हे देव वर, हे समस्त देवताओं के पूज्य, आप देखिए ये वृक्ष आपके पादाम्बुज में फल और पुष्प अर्पित कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं, कर तो रहे हैं कृष्ण को, लेकिन यह प्रेम की रीति है। रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा है कि अहेर युव गति प्रेमण स्वभाव कुटिला भवत, प्रेम की जो गति है, प्रेम की चाल जो होती है वो सांप की चाल के समान टेढ़ी होती है। सांप चलता है तो सीधा नहीं चलता है, आप लोगों ने देखा होगा, कोई कोई देखे, सांप ऐसे टेढ़ा चलता है, सीधा नहीं चलता है। तो प्रेम की गति टेढ़ी होती है। श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे हैं कि ये वृक्ष मुझको फल और पुष्प दे रहे हैं, बलराम जी को दिखा करके कह रहे हैं कि हे देव, हे देवताओं के पूज्य, देखिए ये वृक्ष आपको फल और पुष्प अर्पित कर रहे हैं। इनडायरेक्ट में भगवान है अपने प्रेम भाव व्यक्त कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि तुम मुझे अर्पण कर रहे हो, मैं तुम्हारे इस प्रेम भाव का आभारी हूं। वृक्षों के प्रति भगवान अभिनंदन कर रहे हैं। यही है पद्धति। हम लोग भारतवर्ष में देखते हैं यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से पूछा जाए, मान लीजिए उसके पास उसका पुत्र है, तो ये पूछा जाए ये किसका पुत्र है, तो आदमी ही कहता आपका पुत्र, यही उत्तर दिया जाता है, ये आपका घर है, आपकी कार है, आपका ये है। इस तरह से व्यक्त करने की विधि है, सीधे इस तरह से नहीं कहते सब मेरा है इस तरह से कहने की पद्धति नहीं है। एक ही बात के लिए आपका है नहीं कहा जा सकता है एक बार ऐसे विनोद में कहा था, सबको कह देंगे कि आपका है, आपका, अपनी पत्नी को नहीं कहेंगे कि बस बाकी और सब आपका है ये व्यवहार में इस तरह का वर्णन किया। तो भगवान श्री कृष्ण वृक्षों के प्रेम भाव का अभिनंदन कर रहे हैं श्री बलराम जी के लिए कह करके, हे देवताओं से भी पूज्य, आपके जो चरण कमल हैं उनकी आराधना ब्रह्मा जी करते हैं, अमर देवराज इंद्र करते हैं, या शिव जी करते हैं आपके चरण कमल की पूजा, मतलब मेरे चरण कमल की पूजा, ये भाव समझना चाहिए। लेकिन भगवान ये कैसे कहें कि हमारे चरण कमल की पूजा ब्रह्मा आदि देवता करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बहुत सुशील व्यक्ति हैं, बहुत गुणवान, कभी नहीं कहते हैं कि मैं पूज्य हूँ, ये हूँ, वो हूँ, और बड़ा भाई तो पूज्य है ही, तो अपनी पूजा को भावना को बलराम जी के लिए कह करके व्यक्त करेंगे, देखिए ये वृक्ष आपको फल और पुष्प अर्पित कर रहे हैं उन्हीं चरणों में, जो चरण ब्रह्मा शिव आदि के पूज्य नमन्ति उपादाय शिखा विरात्मन स्तमोपहत्ते तरुजन जत्कृतम, हे देव देखिए ये अपनी शिखाओं से, अपनी शाखाओं से आपके चरणाम्बुज में नमन्ति नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और केवल प्रणाम ही नहीं कर रहे हैं, देखिए आपको सुमन फलार्हणम, आपको सुमन और फल अर्पित कर रहे हैं, इनके पास जो कुछ भी धन है ये सारा धन आपको अर्पित कर रहे हैं। वास्तव में वृक्ष के पास क्या धन है, फूल और फल यही धन है वृक्ष, तो अपना धन आपको अर्पित कर रहे हैं, धन्य है इनका जन्म। और लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक बात कर रहे हैं कि इन वृक्षों के हृदय में एक बात का दुख है कि इनको वृक्ष का शरीर क्यों दिया गया। वास्तविक बात तो यह है कि वे नित्य मुक्त जीव है और भगवान की सेवा के लिए ही वृक्ष बने हैं। अप्राकृत जगत में एक विशेषता है कि कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जब चाहे तब चर या अचर शरीर ग्रहण कर सकता है। यदि कोई भक्त चाहता है कि मैं वृक्ष बन जाऊं तो तत्काल बन सकता है, क्योंकि वो चिन्मय देह होता है, चित्त में, इच्छा में, और श्री कृष्ण हमारी शाखा में झूला झूले तो वृक्ष हो जाएगा। ये कोई ये सोचे कि मैं दूब बन जाऊं, श्री कृष्ण उस पर बैठे तो बन जाता है। ये हम लोग इस समय चाहें कि हम वृक्ष बन जाए तो ऐसे नहीं हो सकता है या कोई वृक्ष चाहे कि हम घूमे आदमी जैसा तो नहीं घूम सकता है। जड़ जगत में हम लोग बाध्य हैं, पर अप्राकृत जगत में पक्षी मनुष्य के आकार में हो सकता है, मनुष्य पक्षी बनकर सेवा कर सकता है, वृक्ष बनकर सेवा कर सकता है। तो वृंदावन के जो वृक्ष हैं वो भी चिन्मय परिकर हैं भगवान के, और वो स्वेच्छा से वृक्ष बने हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए, पत्र पुष्प अर्पित करने के लिए। लेकिन बनने के बाद अब उन्हें एक विषय में चिंता है कि ओहो, जैसे सखा घूम रहे हैं कृष्ण के साथ, जैसे पक्षी घूम रहे हैं, पशु घूम रहे हैं, वैसे हम घूम नहीं पाते हैं इनके साथ, हम एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। जैसे कृष्ण लीला करते हुए चले जाते हैं और जो वृक्ष जहां है वहीं पर घूम रहा है, वहीं पर अस्थिर है, घूमता नहीं, तो उसको अनुताप है। तो भगवान कहते हैं कि जिस अपराध के चलते इनको वृक्ष का शरीर मिला हुआ है, उस अपराध से मुक्ति पाने के लिए आपके चरण कमलों में नमस्कार कर रहे हैं, इन पर दया कीजिए, आप उनको अवसर दीजिए कि आपकी अन्य लीलाओं में भी भाग ले सके। तो भगवान ने एक प्रकार से वृक्षों को आश्वासन दिया कि मेरे प्रिय वृक्षों, तुम मेरे अक्सर प्रिय हो, मैं तुम्हारी सेवा को जानता हूं, और तुम्हें बाद में अवसर दिया जाएगा, तुम सचल होकर के मेरी लीला का आस्वादन करोगे, ये भाव। ये वृक्षों का अभिनंदन कर रहे हैं और फिर भावरों का कर रहे हैं। जहां जहां श्री कृष्ण चलते हैं वहां वहां भावरे गा रहे हैं धन 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 धन। तो भगवान श्री कृष्ण श्री बलराम से कहते हैं एते लीनस्तव जसो अखिल लोक तीर्थम गायन तयादि पुरुषान पदम भजन्ते प्रायो अमी मुनि गणा भवती ये मुख्या गूढ़ बने पिन जातन घात्म दैवम। हे देव, ये भावरे जानते हैं कौन है? ये मुनि है, ये सब मुनिगण है, ये मुनि है, आपके भक्त हैं और आपका साथ करने के लिए, आपके साथ रहने के लिए भावरा बने हुए। मुनि के रूप में तो मुनि लोग कृष्ण के साथ चल नहीं सकते थे, एक गोप के साथ कैसे मुनि लोग घूम सकते थे? तो समस्त मुनि नारद आदि मुनि भावरे के रूप में बन करके श्री कृष्ण के वनमाला पर या इधर उधर घूम रहे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं पहचान रहा हूँ आप लोग कौन है। तो श्री बलराम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, अखिल जीवों को तारने वाले आपके जस को गाते हुए ये भावरे आपके साथ चल रहे हैं, ये प्रायो मुनिगण, ये सब मुनि भवदीय मुखिया आपके सेवकों में मुख्य हैं, जितने भी भवदीय हैं, भवदीय माने आपके जो जन हैं, उनमें ये श्रेष्ठ हैं, मुख्य हैं, भवदीय मुखिया। गूढ़ बने पीना चाहे कनघात में दैवम, यद्यपि आप छिप करके गोप वेश में गाय चरा रहे हैं, ये फिर भी आपको ये पहचान लिए हैं कि आप इनके प्रभु हैं, इनके स्वामी हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए हैं गोप वेश में, लेकिन ये कहते हैं गूढ़म बने, आप वन में कभी छिपते हैं, यहाँ तक कि एकांत में भी श्री राधा आदि के साथ भी जो आप लीला करते हैं तो ये सब जान जाते हैं और वहां भी पहुंच जाते हैं। भावरों की पहुंच सब जगह। भगवान श्री कृष्ण गोचारण करते करते कभी अलक्षित रूप से चले जाते हैं वन में, कहीं किसी गोपी से भेंट होती है, श्री राधा से भेंट होती है, भावरे वहां भी चले जाते हैं, इनके लिए कोई प्राइवेट जगह नहीं, दुराव नहीं। इसी बात को भगवान कह रहे हैं कि ये तो गूढ़म बने अति, जब आप वन में छिप जाते हैं उस समय भी आपके साथ रहते हैं, आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं और हमेशा गाते रहते हैं। क्या? तव जस गायन्ति, जस की विशेषता बता रहे हैं अखिल लोक तीर्थम, भगवान की कीर्ति ऐसी है जो समस्त जगत को, सभी जीवों को तार देती है। तीर्थ का अर्थ होता है तारने वाला, जो जीव की अविद्या को नष्ट कर दे और उसको ऊपर उठा दे, उसके स्वरूप में कर दे, उसको तीर्थ कर दे। तो गंगा आदि नदियों में स्नान करने से जीव की शुद्धि होती है, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन जैसी शुद्धि भगवान का कीर्तन गाने से होती है, भागवत सुनने से, भक्तों का आश्रय लेने से, वैसी शुद्धि गंगा आदि से नहीं हो पाती। जैसे प्रकट उदाहरण है कि श्रील प्रभुपाद जी जितना पावन कर दिए समर्थ, गंगा जी में इतनी शक्ति नहीं है पावन करने की। और जो साधु होते हैं जंगम तीर्थ होते हैं, चलता फिरता तीर्थ, गंगा आदि नदियां तो केवल एक लकीर में बहती हैं, वहां से हट करके दूसरी जगह नहीं जा सकती। लेकिन शास्त्र वर्णन करता है एक साधु एक ऐसे तीर्थ होते हैं जो चलता फिरता तीर्थ होते हैं, तारते हैं। किस चीज से तारते हैं? शिवताम स्व कथाम कृष्ण, कृष्ण कथा से तारते हैं। वास्तव में जीव को तारने वाली वस्तु है कथा, भगवान का यश, हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम।
इसलिए भगवान का जस हमेशा गाना चाहिए और विशेष करके इस युग में तो भगवान के नाम के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है, कुछ साधन हो नहीं सकता है, करने की योग्यता भी नहीं है, किसी में समय नहीं है, कई प्रकार से। तो पहले से ही जस की बहुत महिमा है और आज के युग में तो कोई उपाय नहीं।
इन प्रसंगों से हमें भी सीखते चलना चाहिए कि हमें भंवरा बनना है, कृष्ण तो बनना नहीं है कि नहीं कि हमारा जस कोई गावे एक जगह मैं गया था बसंत पंचमी के दिन एक मठ में चला गया, नॉन वैष्णव ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें मैं देखा गुरु जी झूला पर बैठे थे और जितने लोग आ रहे थे सब गुरु जी को झूला रहे थे और भोजपुरी में गीत गा रहे थे, हमारे सत गुरुदेव के झूलेला पालना, हमारे सत गुरुदेव का पालना झूल रहा है। और मैं इसके बाद देखने लगा भगवान का कोई अस्तित्व है कि नहीं इस मंदिर में, तो भगवान श्री कृष्ण का फोटो था एक जगह, मेन जगह पर नहीं, कहीं लगाया गया था दीवार में, भगवान का कोई नामो निशान नहीं, अल्टर में कहीं कुछ नहीं, केवल गुरु, तो गुरु को पूछ रहे थे। तो हमने एक व्यक्ति से पूछा कि ये बसंत पंचमी के दिन आप गुरु को झूला झूला रहे हो, भगवान कृष्ण को क्यों नहीं झूलाते? तो बेचारा इनोसेंट था, वो कहा कि हम तो नहीं जानते हैं, सब लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, हम कभी इस पर सोचे भी नहीं, सब लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। वास्तव में जीव के नित्य बंधु सब कुछ कृष्ण है और गुरु कृष्ण से मिलाने वाला है, यह सिद्धांत है। तो कृष्ण का भक्त जो होता है उसका स्वभाव ही होता है कि वह कृष्ण की कीर्ति गाता है, कृष्ण से जीवों को जोड़ता है, कृष्ण के बारे में प्रचार करता है, अपना प्रचार नहीं करता, हेतु उसका प्रचार अपने आप हो ही जाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान का प्रचार किया तो भगवान के प्रचार के साथ साथ श्रील प्रभुपाद जी को सारा जगत जान गया, तो हो ही जाता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने कभी अपना प्रचार नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं, उन्होंने कृष्ण को लाया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए उन्होंने इंटरनेशनल समाज की स्थापना की, तो इससे उनका प्रचार हो गया। लेकिन वास्तव में कृष्ण भक्त का स्वभाव होता है कि सदा कृष्ण का जस गाता है। आज के युग में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य मनुष्यों के सामने आ रहा है कि परम सत्य को, परम पिता को, भगवान को जनता के सामने नहीं आने दिया जा रहा है, और इसमें सबसे भारी भूमिका कौन लोग निभा रहे हैं, कौन नहीं आने दे रहे हैं? साधु तथा कथित साधु लोग नहीं आने दे रहे हैं। जनता को तो इससे कोई मतलब, जनता को कोई दिक्कत नहीं है, अगर असली भगवान का पता लगे तो जनता खुश है, लेकिन जो अपने को भगवान कह कर प्रचार कर दिए हैं उनके सामने बहुत भारी दिक्कत आ जाएगी, और इस हरे कृष्ण आंदोलन से वो दिक्कत पहुंच गई, क्योंकि असली भगवान का पता लग गया। प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरे प्रचार से नकली भगवानों को बहुत भारी दिक्कत होगी वो नहीं चाहेंगे कि ये स्कैम फैले और उनके पुजारियों को भी दिक्कत होगी जो वास्तव में असत्य पर रहना ही चाहते हैं, जिन्होंने बिल्कुल शपथ ले लिया है कि मुझे असत्य पर ही रहना है, उनको इस हरे कृष्ण आंदोलन से बहुत दुख होगा। कितने लोग तो कहते हैं, हम लोगों को कहते हैं, ये लोग तो केवल कृष्ण को भगवान मानते हैं, जैसे लगता है कि एक संकीर्ण बुद्धि के आदमी हम लोग केवल कृष्ण को भगवान मानते हैं, हम लोग थोड़े मानते हैं, भागवत कह रहा है, भगवत गीता में है, उपनिषद में है, सब सारे ग्रंथ वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्य, समस्त वेदों के द्वारा कृष्ण वेद्य है, तो हम लोग कृष्ण को मानते हैं तो वास्तविक तो बात यही है, ऐसा नहीं है कि तुम कुछ मान लो तो वही सत्य हो जाएगा, तुम कुछ मान लो तो वही सत्य हो जाएगा, सत्य हमारे मानने की अपेक्षा नहीं रखता है, हमारी मान्यता की अपेक्षा सत्य नहीं रखता है, सत्य सत्य है। जैसे मान लीजिए रात्रि में हम सब लोग विवाद करना चालू करें कि पूर्व दिशा किधर, ईस्ट डायरेक्शन किधर, और सूर्य अस्त हो चुका है रात्रि में पता नहीं चल रहा है, कोई कहेगी इधर है, कोई कहे इधर है, कोई कहे इधर है, कोई कहे इधर है, और पांचवां व्यक्ति आकर के कहे कि थोड़ा थोड़ा सब साच हो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। निश्चित है कि उनमें से केवल एक ही व्यक्ति सत्य होगा। भाई इसका पता कैसे लगेगा कि पूर्व दिशा किधर है, क्या पता लगेगा अंधकार में, क्या पता लगेगा? लेकिन अंधकार में भी पता लगाने की एक विधि है, स्टैंडर्ड स्वीकार करना, जो नियम है वो स्वीकार करना। नियम क्या है? नियम यह है कि सूर्य जिस दिशा में उगता है उसको पूर्व कहा जाता है। नियम ये है, पूर्व में सूर्य नहीं उगता है। ये श्रीमद् भागवतम में लिखा गया पंचम स्कंध में, सूर्येण ही विभज्यन्ते, सूर्य के द्वारा दिशाओं का विभाजन होता है। पूर्व दिशा में सूर्य नहीं उगता है, ये समझने की बात है। सूर्य जिधर उगता है उसको पूर्व दिशा कहते हैं। तो जिन लोगों को ये स्टैंडर्ड मालूम रहेगा तो विवाद को क्षण भर में हल कर देंगे। चुपचाप रहो, सवेरा होने दो, अपने आप पता लग जाएगा पूर्व किधर है कि नहीं, सवेरा होने दो। ये शास्त्र जो है वो सूर्य की तरह है। वास्तव में श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता सूर्य की तरह है। श्रीमद् भागवतम की तो उपमा दी गई है कि स्वधाम कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानाद भी सह कलौ नष्ट दृशा में सब पुराण आर्को अधुनोदित। यह पुराण सूर्य उदित हुआ है, जो सूर्य के उगने पर हम सब कुछ क्लियर देखते हैं। ये गिलास इधर है, भागवत इधर है, ये टेबल इधर है, डीटी इधर है, वो आदमी सब कुछ देख रहे हैं ना। लेकिन सूर्य न रहे, कोई प्रकाश न रहे, तो हम कुछ भी नहीं देखेंगे। तो शास्त्र जो है सूर्य की तरह लाइट देता है। हम कौन है, इस जगत को बनाने वाले कौन है, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, क्या साधन है, क्या साध्य है, लोक परलोक स्वर्ग नरक वैकुंठ क्या है, इन सारी बातों पर रिफ्लेक्शन डालता है शास्त्र, सब कुछ क्लियर बताता है। इसलिए उसकी उपमा सूर्य से दी गई। तो जैसे मान लीजिए रात्रि में विवाद हो रहा है, रात्रि में विवाद हो रहा है और कोई व्यक्ति यह कह दे भाई जिधर सूर्य उगता है उसको हम पूर्व दिशा मानते हैं, तो इस बात को न जानने वाले कुछ लोग कहे कि ये तो केवल सूर्य घटता है। सूर्य जिधर उगेगा वो उसको पूर्व कहता है। इसका जो विचार है वो सीमित विचार है, वास्तव में उदार विचार होना चाहिए। जो जिधर कहते वही पूर्व है। जत मत तत पंथ, जत मत तत पंथ। आज के युग में अद्भुत अज्ञान छा गया मनुष्यों को कि इतना नग्न सत्य भी लोग नहीं समझ रहे। तो इसी तरह से शास्त्र जब कहता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है, हम सब कौन है, चाहे केवल यही बात नहीं कि शास्त्र भगवान का वर्णन करता है और हमको छोड़ दिया, हमारा वर्णन हम क्या है, ममई वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन, हमारा भी वर्णन करता है हम क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा ही अंश जीव है, जो जीव भूत स्थिति में इस समय है, इस लोक में, इस शरीर में, ब्रह्मभूत नहीं है इस समय, वास्तविक सत्ता है वो ब्रह्मभूत है, लेकिन इस समय वो जीव भूत है इस लोक में, इस शरीर में, वो ममई वंश मेरा ही अंश। सारी दुनिया में जितने जीव हमको भगवान कहते हैं मेरे ही अंश है। हम ऐसा नहीं कह सकते ममई वंश कृष्ण हमारा ही अंश भगवान है, ऐसा नहीं कह सकते। हमारा अंश क्या भगवान हो सकता है, हमारा अंश कोई नहीं है वास्तव में। यहां तक जो बेटा है बेटी है वो भी हमारे अंश नहीं है, है कि नहीं? हम मर जाएंगे फिर भी वो जीवित रहेंगे। वो हमारा अंश नहीं है, और हमारे जन्म लेने से पहले भी वे थे, भले अदृश्य थे, दूसरे शरीर में थे। वो जो जीव है उसके साथ भी हमारा संबंध नहीं है, और जो शरीर है उसके साथ भी संबंध नहीं है। उनका जो शरीर है वो बहिरंगा प्रकृति का दिया हुआ है, उपादान कारण प्रकृति है, और जो चिन्मय जीव है वो भगवान श्री कृष्ण का की परा प्रकृति है, चाहे अपरा प्रकृति उनकी या परा प्रकृति, लेकिन जीव का एक जीव के साथ कोई खास संबंध नहीं, नहीं कह सकता है मेरा अंश है। इन श्री कृष्ण तो सबके लिए घोषित कर रहे हैं सभी मेरे अंश है। तो जीव का भी वर्णन जगत करता है, ये शास्त्र करता है। श्रीमद् भगवद गीता में खास करके पांच विषयों का वर्णन है, ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति और कर्म, पांच विषयों का भगवान ने वर्णन किया। तो उसमें जीव भी एक विषय है। जीव है, एक ऐसी वस्तु है जिसके विषय में बहुत बहुत विवाद है, क्या है, कहाँ से आ गया, कैसे क्या करेगा, तो और बातों का तो बहुत बढ़िया से पता नहीं चलता है, लेकिन इतना पता चलता है कि भगवान का भजन करेगा तो भगवान के पास चला जाएगा, इतना क्लियर वर्णन मिलता है। यह स्पष्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जीव का वर्णन है, श्री जीव गोस्वामी ने जीव तत्व भी अपने सब संदर्भ में एक्सेप्शन में रखा है, जीव तत्व उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया। अच्छा, ये प्रकृति क्या है, जड़ जगत क्या है, कर्म का क्या अर्थ होता है, काल का क्या अर्थ होता है, ये सारी बातों का वर्णन किया गया। तो हम लोग वास्तव में इस शास्त्र के अनुगत विचार को ग्रहण करके कहते हैं कृष्ण भगवान है और जीव उनका दास है, सबको शरण लेनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं इस प्राकृत जगत में जो इसको ग्रहण नहीं करते, उनकी श्रद्धा है भगवान में लेकिन चाहे पहले के सुन करके या कल्पना करके कहते हैं कि हम मानते हैं कि भगवान है लेकिन एक शक्ति है और निराकार है। संसार में हम समझते हैं कि 95% मानवों की जनसंख्या इसी अज्ञान में है, निराकार में प्राय। हिंदुओं में भी बहुत निराकारवादी हैं, बहुत कम लोग हैं जो भगवान के रूप को मानते हैं और समर्पण करते हैं। समर्पण करने वाले तो बहुत कम हैं, लेकिन भगवान का अंग मानने वाले कुछ हैं, बाकी और सब जगह तो निर्विशेष शून्यवादी। पाश्चात्य देश तो पाश्चात्य देश तो पूरा पूरा शून्यवादी और निर्विशेषवादी है। तो यह एक अज्ञान है वास्तव में। तो श्रील प्रभुपाद इस अज्ञान को तोड़ने के लिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस की स्थापना की है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय समाज कृष्ण भक्ति उत्पन्न करने के लिए है और हो रहा है रियली सब जगह। जो इसके संपर्क में आते हैं, खास करके इसके लिटरेचर के संपर्क में, भक्तों के संपर्क में, तो वे कृष्ण को जान जाते हैं। तो जिस कृष्ण की भक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय समाज की स्थापना हुई, उसी कृष्ण का वर्णन करने के लिए श्रीमद् भागवतम जहां हम लोग सुन रहे हैं। ये मुनि लोग भगवान श्री कृष्ण के विषय में गाते रहते हैं। मेरा मुख्य तात्पर्य है गाने से था। और अखिल लोक तीर्थम, अखिल का अर्थ होता है संपूर्ण विश्व के जितने भी जीव हैं, यदि सबको हम तारना चाहते हैं, उनका अज्ञान मिटाना चाहते हैं, पाप ताप समाप्त करना चाहते हैं, तो कृष्ण के यश को गाने के लिए उन्हें कहना चाहिए, कृष्ण के नाम को गाने के लिए कहना चाहिए। यदि कोई गाता है सुनता है तो तर जाएगा,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और इस सिद्धांत को स्वयं भगवान अपने मुख से बोल रहे हैं। बलराम जी से कहते हैं कि तव यश अखिल लोक तीर्थ, हे प्रभु आपका जो जस है तो अखिल लोकतीर्थ है। खिला का अर्थ होता है अपूर्ण और अखिल का अर्थ होता है संपूर्ण। संपूर्ण जीवों को एक तरह से तारने के लिए समर्थ है भगवान की कीर्तन। इसे पढ़ करके प्रबल साधन कुछ है ही नहीं, भगवान की विशेषता। इसीलिए हम लोग सुन रहे हैं, गा रहे हैं, और ये प्रकट अनुभव है सारे जगत में कितने लोग शुद्ध हुए। तो प्राय ये मुनि है और आपके भक्तों में प्रधान है, अपने इष्ट देव को, आपको अर्थात मुझे एकांत में भी ये नहीं छोड़ रहे हैं, सब जगह जाते हैं, जहां जहां कृष्ण जाते हैं वहां जा रहे हैं। इसके द्वारा भगवान ने मुनि शब्द की परिभाषा भी दे रहे हैं, डिफिनेशन दे रहे हैं कि जो मेरा यश गाता है वही मुनि। मौन रहने वाला मुनि नहीं, मौन का अर्थ होता है यथार्थ भाषण, मौन का अर्थ ये नहीं होता है चुपचाप रहना। चुपचाप रहना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। एक आश्रम में मैं गया तो वहां लिखा हुआ था बोलिए मत। हम लोग तीन चार भक्त थे जा रहे थे तो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम जपते भी जा रहे थे। लेकिन मैं तो पढ़ा बोलिए मत, लेकिन हम लोग बोलते ही जा रहे हैं। तो एक साधु उधर से दौड़ा हुआ है, मैं आगे बढ़ गया था और दूसरे भक्त थे उन लोगों से कहा चुप 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 बोलिए मत चुप चुप चुप। और उसके गुरु जी बैठे थे भीतर पूरे हाथे में पूरे मतलब उस घेरा में बोलना नहीं था। जो भी आते थे चुप चले जाते थे, गुरु जी के पास भी चुप बैठते थे और गुरु जी भी चुपचाप रहते थे। पता नहीं ये चुप के द्वारा कौन शक्तिपात करते थे। तो इस तरह से चुप चुप चुप। हम लोग तो चुप वाले नहीं, हम लोग तो बल्कि चुप वालों को कहते हरी बोल। कीर्तनियो सदा हरी। सदा कीर्तन, सदा बोलो। चुप रहते तो ये चुप तो और लोग हैं ही, कुत्ते चुप रहते हैं, वृक्ष चुप रहते हैं, गाय बैल सब चुप है। ईश्वर के विषय में कुछ बोलना चाहिए ना, भगवान के विषय में बोलना चाहिए, चुप क्या रहना। तो वो कहा चुप 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 चुप। भक्त लोग तो कन्फ्यूज हो गए, तो लोग देखने लगे हमारे तरफ। मैं आगे बढ़ गया था कि महाराज जी चुप होते हैं कि नहीं, क्या कर रहे। तो हमसे आकर के नहीं कहा, कुछ शर्म किया होगा, नहीं आकर के कहा। मैं बोल रहा था हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। एक दूसरा व्यक्ति आया हमसे कहा कि महाराज इस आश्रम में चुप रहने का नियम। मैं कहा हरी बोलो, ये नियम सब जगह का है, सारी दुनिया का नियम है, तुम्हारे आश्रम का ही नहीं, सार्वभौम नियम है, सारी भूमि का है। हरी बोल ये सारी दुनिया का नियम है। नहीं, इस आश्रम में ये नियम है। कहा आश्रम का नियम है ना, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कीर्तनीय सदा है, सारे जगत में सब जगह भगवान का नाम होना चाहिए। आप भी बोलिए और सब हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। तो बेचारा कंफ्यूज हो गया, जाकर अपने गुरु महाराज से कह दिया। गुरु महाराज से जाकर कहा कि तो कुछ लोग आए हैं ये हरि बोल हरे कृष्ण कर रहे हैं। तो गुरु जी कहा हरे कृष्ण वाले हैं तो ठीक है, वो लोग करते ही रहते, छोड़ दो। वो ही स्वीकार करे, वो लोग कहते ही रहते, वो हरे कृष्ण हमेशा करते रहते, उनको मत मना करो। तो इस तरह से वास्तव में ये हरे कृष्ण महामंत्र सार्वभौम है, सार्वकालिक है। तो सवेरे शाम दोपहर या 78 में, 76 में, 77 में, जनवरी में, फरवरी में, सुबह शाम हर एक समय कीर्तनीय सदा है, सब समय कीर्तनीय बोलना चाहिए। कीर्तन का मतलब है बोलना या लिखना, ग्रंथ छापना। हम लोग का स्वरूप है कि कृष्ण के दास हैं, तो कृष्ण के विषय में बोलना, उनको ग्लोरीफाई करना, प्रचारित करना, ये हमारा सहज स्वभाव। पुस्तक बांटना, जप करना, कीर्तन करना, सुनना, प्रचार करना, ये आवश्यक है। लोगों को पता चलना चाहिए कि वास्तव में भगवान परम सुंदर हैं, परम कृपालु हैं, हमारे अपने हैं, हमसे स्नेह करते हैं, हमारे सुहृद हैं। यह नहीं कि लोगों को पहले ही पता चल जाए कि वो निराकार है और हमसे न भेंट करेंगे, न बात करेंगे, न खान पान पूछेंगे। ये कैसा विचार है? कोई किसी के बारे में भगवान का कंसेप्शन देता है तो बता दे कि वो तो आपसे बात नहीं करेंगे। जो हमसे बात ही नहीं करेंगे तब तो हम उनसे क्या बात, क्या उनका भजन करें? कभी सामने आकर के पूछेंगे नहीं कि तुमको पानी चाहिए कि नहीं, भोजन चाहिए कि नहीं, कुछ नहीं। क्या इस प्रकार का ईश्वर जो सारी दुनिया को बनाया और दुनिया में बने हुए जीव से बात तक नहीं करेगा, वो कैसा भगवान है बताइए? कोई ऐसे पिता की आप कल्पना कीजिए कि बच्चा पैदा किया, दूसरा लेकिन पूछा वो कैसे है, तो वो कभी बात नहीं करेंगे तुम लोगों से, कभी उनसे भेंट नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते। वो ऐसा बात किस काम का है कि मिल ही नहीं सकते, भेंट नहीं कर सकते। और उसे मैं शुरू में कहा कि इस धारणा ने, इस कंसेप्शन ने जगत में भक्ति को नष्ट कर दिया है, भक्ति नहीं आ रही। इसलिए हम लोगों का धर्म बनता है कि इस कंसेप्शन के विपरीत प्रचार करें। प्रचार तो वैसे हो ही रहा है, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद चाहते थे कई गुना अधिक होना चाहिए, बहुत प्रचार की आवश्यकता है। तो भावरे भगवान का यश गाते रहते हैं। देखिए वृक्षों का और भावरों का वर्णन किया, अब भगवान पक्षियों का वर्णन कर रहे हैं। नृत्यम तमीम सिखिन इद्य मुदा हरिण्यः कुर्वन्ति गोप्यैव ते प्रियमिच्छरेण सुप्तैश्च कोकिलगणा गृहमागताय धन्या बनौ कसय्या निषतः निषद्गः। पक्षियों के प्रति अपना अभिनंदन भगवान व्यक्त कर रहे हैं। हे इड्य, हे कीर्तनीय, श्री बलराम जी के लेकर हे स्तुत्य, हे कीर्तनीय, अमी सिखिना नृत्यंती, देखिए मयूर आपके आगे आगे बगल में नाच कर रहे हैं। श्री कृष्ण के आगे आगे मयूर नाच करने लगते थे, ये जहां तहां, और पंख ऊपर उठा करके नृत्य करने लगते थे खुशी में। तो भगवान कहते हैं देखिए, दिखा कर कह रहे हैं अपनी तर्जनी से, ऐसे दिखा दिखा कर भगवान कह रहे हैं। अमी शब्द यह बता रहा है, देखिए ये मयूर नृत्य कर रहे हैं और हरिणिया कुर्वंत गोप्य प्रेमिक्षण, ये हरिणिया अपने सुंदर सुंदर नेत्रों से आप पर देख रही हैं, उसी तरह से देख रही हैं जैसे गोपियां आप पर देखती हैं। इस तरह से भगवान बिल्कुल भूल गए यह वर्णन कर रहे हैं। दो बार भगवान इस बात का वर्णन कर रहे हैं। श्री बलराम जी से कहते हैं जैसे गोपियां आप पर प्रेम से देखती हैं, वैसे ही ये हरिणियां बड़ी बड़ी आंखों से आपको देख रहे हैं। एक कवि ने लिखा है कि यहां पर ऐसा भगवान क्यों वर्णन कर रहे हैं, श्री बलराम जी से यह क्यों कह रहे हैं कि गोपियां आपको देख रही हो। वास्तव में श्री कृष्ण अपना वर्णन कर रहे हैं। एक भक्त ने बड़ा सुंदर समाधान किया है, वो कहते हैं कि जिस मनुष्य का, जिस व्यक्ति में दृढ़ अभिनिवेश होता है, प्रेम होता है, तो अवश्य अवस्था में उसके मुख से वो बात प्रकट हो जाती है। गोपियों में भगवान श्री कृष्ण का अभिनिवेश है, वो दिन रात चिंतन करते रहते हैं, तो इसलिए वे इस बात को भी भूल गए कि मैं बड़े भाई से बात कह रहा हूं। और सखाओं के बीच में कहते हैं गोपियां जैसे प्रेम से आपको देखा करती हैं, ऐसे ये हरिणियां देख रही हैं। सब तो वर्णन अपने लिए कर रहे हैं, ये तो इस तरह से बड़े भाई से कैसे कह सकते थे। इसी को अभिनिवेश कहते हैं, भगवान भी गोप अभिनिवेश में है, उस पर भी गोपियों से उनका प्रेम है। जैसे गोपी जनों का दृढ़ प्रेम है कृष्ण में, ऐसे कृष्ण का भी उनमें बहुत प्रेम है, तो वो अवस अवस्था में प्रकट हो गया है। इस तरह से कह रहे हैं कि हरिणियां वैसे ही आपको देख रही हैं जैसे गोपियां आपको देखती हैं। तो दृष्टि के द्वारा भी सत्कार किया जाता है, नृत्य करना, देखना और अनुकूल बोलना, तीन चीज का वर्णन कर रहे हैं। सुप्तस्थ कोकिल गण प्रेम से आपको देख रहे हैं, जितने भी स्वागत हैं किसी अतिथि के लिए वो सब कृष्ण के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं, क्योंकि गृहम आगता है। ये वनवासी पक्षी ऐसा मानते हैं कि वन हमारा घर है और श्री कृष्ण हमारे घर में आए हैं, इसलिए श्री कृष्ण का स्वागत कर रहे हैं। नृत्य द्वारा, गीत द्वारा और स्नेहपूर्ण चितवन द्वारा सबसे बड़ा स्वागत है प्रेम से देखना किसी अतिथि के प्रति। देखना अनेक प्रकार के गुणों से युक्त होता है, स्नेह से देखना बहुत महत्व रखता है। ऐसा कहा जाता है कि मछलियां स्नेह से देख करके अपने अंडे को पोष देती है, नीति ग्रंथ में मैं पढ़ा। अंडा देती हैं तो अंडा को छूती भी नहीं, केवल दूर से देखती रहती है स्नेह से, तो उनके स्नेह भरी दृष्टि में शक्ति होती है कि अंडा बहता रहता है। और पक्षी अपने पंख की छाया से अपने अंडा को बढ़ा देते हैं, अंडा देते हैं और पंख की छाया करते हैं, सहलाते हैं तो वो अंडा बढ़ जाता है। उसमें भीतर कोई इंजेक्ट नहीं करते हैं, कुछ डालते नहीं है अंडा में, बाहर से ही केवल स्पर्श करते हैं। और ये मैंने सुना है कि कच्छप कछुआ ध्यान से अपने अंडे को पोष देते हैं। कछुआ कहीं अंडा देता है और दूर रहता है, ध्यान करता रहता है, स्नेह चिंतन करता रहता है, तो उसके चिंतन मात्र से अंडे बढ़ते रहते हैं। ये प्राकृतिक जीवों की दशा है। तो इस तरह से जब एक साधारण जीव भी आंख से देख करके, स्नेह से देख करके अपने अंडे को बढ़ा सकता है, तो फिर भगवान को स्नेह से देखा जाए या भगवान हमारे हम पर स्नेह से देखें तो उसका कितना महत्व हो सकता है। इसलिए मंदिर में आना चाहिए, इसलिए नहीं कि हम भगवान को देखेंगे केवल, इसके लिए भी आना चाहिए कि भगवान हमको देखा करें तो हम निरोग रहेंगे, धनी रहेंगे, सुख से रहेंगे, ठीक रहेंगे। वो भी देखा करें, उनकी दृष्टि में बहुत शक्ति है। एक बार की बात है, मैं सुना था वृंदावन की बात है, स्वामी शरणानंद सरस्वती मानव सेवा स्वयं के संस्थापक हैं, भारत में एक मानव सेवा स्वयं, तो सूर थे, अंधे थे, फिर भी बांके बिहारी जी का दर्शन करने नित्य जाते थे। तो एक बार कुछ लड़कों ने मजाक किया उनसे, स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी और लोग तो बांके बिहारी जी का दर्शन करने आते हैं, तो आपको तो दिखता नहीं है, तो आप क्यों आते हैं रोज। स्वामी शरणानंद जी ने कहा कि मैं आता हूं कि बांके बिहारी जी देख लें कि हमारा दास हाजिरी दे गया, मैं आता हूं कि वे देख लें हमको, मैं उनको नहीं देखता हूं लेकिन वे हमको देख लें, इसके लिए आता हूं। बांके बिहारी तो अंधे नहीं है ना। वो कहे नहीं नहीं वो आप देख नहीं है, तो आप वे देख लेते हैं। वो बड़े लज्जित हुए लड़के बाद। तो इसलिए भी आना चाहिए कि भगवान हमको देख। या अपने घर में भी जो ठाकुर जी को रखे हैं फोटो के रूप में या मूर्ति के रूप में, तो जाकर पढ़ कर बैठना चाहिए कि भगवान हमको देखे, हम उनको देखें। हो सकता है हम उनको न देखें, हमारा मन इधर उधर हो, लेकिन भगवान तो देखेंगे निश्चित कि आया है हमारी शरण में। तो उनके देखने से जीव फ्लॉरिस्ट होता है, बस उसके दुख मिटते हैं, देखने की भाव विशेषता। हमारे यहाँ इंडिया में तो लोग ट्रक पर भी लिखे रहते हैं, देखो मगर प्यार से। देखो देखना मना नहीं है, लेकिन स्नेह से देखो। और साथ ही लिखे रहते हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। वो भी शिक्षा देते हैं, एक स्नेह भरी दृष्टि होती है, वो दृष्टि जैसे माँ अपने पुत्र को देखती है, या पत्नी अपने प्रियतम पति को देखती होगी, या पति पत्नी को देखते हैं, भाई भाई को देखते हैं, वास्तव में स्नेह भरी दृष्टि से देखते हैं। दृष्टि द्वारा ही मनुष्य के अंतःकरण के भावों का विज्ञापन होता है, ये तो ऐसे पता नहीं चलेगा। वाणी भी आदमी हो सकता है उल्टा बोल दे, भीतर क्रोध है लेकिन बाहर प्रकट नहीं होने देगा। कभी कभी तो ऐसा हम देखते हैं भक्तों में भी, आपस में कोई द्वेष भी रहता है लेकिन आने आओ हरे कृष्ण आएंगे स्वागत है, वाणी से पता नहीं चलता है क्रोध का। लेकिन आंखें ऐसी हैं कि कोई इन पर से भावों को दबा नहीं सकता है, आंख ही वास्तविक इंडेक्स है हृदय का। जैसा भाव यहां पर होता है उस तरह की आंखें हो जाती है, बनावटी कोई नहीं कर सकता है। ये लिखा हुआ है। एक बार ब्रह्मा जी जब शुरू में सृष्टि किए, चार कुमारों की प्रथम सृष्टि, तो चारों कुमारों को उन्होंने कहा कि बेटा तुम लोगों को भी इस तरह सृष्टि करनी चाहिए, लेकिन वे लोग कह रहे नहीं हम ये सब झंझट में नहीं पड़ेंगे, हम तप करेंगे, हम ब्रह्मचारी रहेंगे और तो ब्रह्मा जी को इस बात से, पुत्रों की इस अवज्ञा से क्रोध आ गया। क्रोध आया लेकिन वे भगवान के पुत्र हैं ब्रह्मा जी, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्रोध करना ठीक नहीं है, क्रोध को दबाने की कोशिश की। वाणी से कोई भी साप नहीं दिए, गाली नहीं दिए कि तुम लोग नालायक हो, ये वो बात को नहीं मानते, कुछ कहा नहीं उन्होंने। वे रोके, वाणी को रोक लिए, लेकिन उनके नेत्रों पर क्रोध आ गया और नेत्र से ही एक रोता हुआ बच्चा पैदा हुआ। बाद में उसने पूछा मेरा नाम क्या होगा, मेरा स्थान क्या होगा, तो ब्रह्मा जी ने बताया तुम जन्म लिए रो रहे थे इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा, और स्थान दिया और सब किया और सृष्टि में लगा दिया ब्रह्मा जी, तुम सृष्टि करो, क्योंकि रुद्र ने पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि ऐसे चार नालायक बेटा हुए कि कहने के बाद भी नहीं माने और ये बिना आज्ञा के आज्ञा मांग रहा है, क्या सेवा करो। बहुत खुश हुए, कहते सृष्टि करो, और ऐसा कहा कर ब्रह्मा जी थे तप में भजन में लग गए, भगवान से सृष्टि करने लगे, रुद्र सृष्टि करने लगे। तो अपने स्वभाव जैसा भूत प्रेत सांप बिच्छू ये सब भरने लगे सृष्टि। तो ब्रह्मा जी का बाद में ध्यान आया, देखे कि जरा शीतन पुत्र की सृष्टि देख ले। उन्होंने देखा तो तंग हो गए कि अरे इस तरह की अनवांटेड पॉपुलेशन सृष्टि में इस तरह के जो ब्रह्मा जी नहीं चाहते हैं कि भर है। मैं कहा बस 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 अब हो गया, अब तुम सृष्टि मत करो, अब तुम तप करो। तो उसी समय से रुद्र आप केवल तप करते हैं। उन्होंने कहा कुछ तो ड्यूटी तो होनी चाहिए तप के अलावा, तो उन्होंने कहा बस सृष्टि का जब प्रलय करना हो तुम काम करना है, बाकी समय अब सृष्टि करना नहीं है तुमको। इस तरह से फालतू भारतीय। तो ये मैं कह रहा था कि ब्रह्मा जी इतने समर्थ हैं जो क्रोध को रोक सकते हैं, उमड़े हुए क्रोध को वाणी पर नहीं आने दिए लेकिन आंखों में वो आ गया। इसीलिए सबसे पहले कोई आदमी किसी से काम कराने जाता है, किसी ऑफिसर से चाहे अपने पिता से ही, तो देखता है उनकी आंखें कैसी हैं, देख लो क्या मूड है। तो मूड का पता आंखों से चलता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा किसी से कुछ काम करने के लिए, किसी से आग्रह किए कि हमारा एक काम होना चाहिए, अगर आपके आग्रह को आपके रिक्वेस्ट को सुनने के बाद वो आदमी अगर नीचे देखने लगे तो समझ जाए कि आपका काम करने नहीं सकते। एक ही पहचान है, आपने कुछ कहा और वो आपके सामने ही बिल्कुल देख रहा है बिना हिचकिचाहट के, तो समझिए कि 100% आदमी प्रसन्न है। अगर नीचे देखने लगे चाहे इधर उधर देखने लगे तब भी समझना चाहिए कि नकारने की एक विधि है। अच्छा, कुछ मांगने पर कुछ कहने पर यह कह दे कि वो आपको पहले कहना चाहिए था, तो इसे भी समझ लेना चाहिए कि एक नकारने की विधा है, ये भी एक विधि है। और वो कह रहे कि इस समय तो मैं दूसरे काम में बिजी हूँ आके, तो तब भी नकारने की विधि है। छह प्रकार का नकारना इस तरह से होता है। तो सबसे ज्यादा ये दिखाया गया कि देखो आंखों की क्या दशा है। अब यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है, भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियां दृष्टि द्वारा एक क्षण नते प्रियम कुर्वन्ति, आपका प्रिय कर रहे हैं नेत्रों द्वारा, तो नेत्रों से को क्या कोई किसका प्रिय करेगा, यही प्रियता है छिपी हुई है। वास्तव में सबसे अधिक स्नेह भरी दृष्टि अपेक्षित, और कुछ भी कोई किसी को ना दे लेकिन प्रेम से देखे, और दूसरी बात जिह्वा का भी प्रयोग करे अनुकूल भाव से, तो यही बहुत बड़ा धन है। आप किसी के पास गए और वो आप प्रेम से देखे और आपसे बात करे, हो सकता है उसके पास पानी भी न हो देने के लिए, लेकिन आंख और वाणी यदि मन अनुकूल है तो सब ठीक, ये शास्त्र कहता है। एक नीतिकार ने तो कहा है कि जलम अन्नम सुभाष पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, इस पृथ्वी पर तीन रत्न है, जलम अन्नम सुभाषितम और मुढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, तीन ही रत्न है इस पृथ्वी पर, अन्न भोजन जल और सुंदर वचन। मूर्खों ने पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा दे दिया है। ये सोना चांदी एक पत्थर है वास्तव में, लेकिन इनको रत्न संज्ञा दे दिया गया है। यानी रत्न वास्तव में है पानी, जल और सुंदर वचन, यही रत्न है। और जो व्यक्ति इन तीनों से युक्त है वो धनी है और रत्नवान है। तो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं तो हरिणिया पूर्ण अनुकूल भाव से उनको देख रही है, हमारे प्रिय हैं, हमारे घर में आए हैं तो स्वागत कर रहे हैं। वाणी से सुक्त कोकिल गण, वाणी से कोयल स्वागत कर रहे हैं। श्री कृष्ण के प्रवेश करते हैं सभी कहकर स्वागत कर रहे हैं और मयूर नृत्य कर रहे हैं। ये स्वाभाविक हम लोग देखे हैं, जब कोई दुल्हा आता है घर पर तो इस तरह से उसका स्वागत किया जाता है, बाजे बजते हैं, कुछ लोग नाचते हैं, कई तरह के गीत होते हैं, तो प्रेम से मिलते हैं, देखते हैं। तो श्री कृष्ण तो वृंदावन के वास्तविक नित्य दुल्हा है, प्रवेश कर रहे हैं प्रथम बार, अवतार लिए हैं, अवतार लेकर के अभी गोवत्स चारण कर रहे थे और अब आज अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन वो वनवासी पक्षी पशु समझ रहे हैं कि ये हमारा घर है और श्री कृष्ण इसमें प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए वे स्वागत कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धन्य है ये मयूर धन्य है, ये हरिणिया धन्य है, कोकिल धन्य है, धन्य बनौकस याम ही सता निसर्ग, यही है सज्जनों का स्वभाव। भगवान का यान बस बस यही है साधु पुरुष का स्वभाव। निसर्ग का अर्थ होता है स्वभाव, सर्ग का अर्थ होता है जन्म, और निसर्ग मतलब स्वभाव। अनादि काल से हम लोगों का कुछ स्वभाव बन गया है अलग अलग प्रकृति के जगत में, इस प्राकृत जगत में, तो इसको स्वभाव कहते हैं। तो कुछ ऐसे जीव यहाँ पर होते हैं मनुष्यों में जिनका स्वभाव बहुत सुंदर होता है, दूसरों को सुख देना चाहते हैं, हमेशा सुख देते हैं। कुछ ऐसे जीव है जिनका स्वभाव दूसरों को दुख देना हो जाता है, जैसे सर्प, ये बिच्छू। सर्प का कोई कुछ भी अपराध न करे, उनको प्रणाम भी कोई करे, उनको छू करके तो डस देंगे, तो उनका वो निसर्ग है। वो ये नहीं सोचेंगे कि प्रेम से कोई छू रहा है कि द्रोह से छू रहा है, बस उनका स्वभाव है, फन से फन काटेंगे और डस। बिच्छू को आप प्रेम से छुए लेकिन डंक मारते। कुछ ऐसे आदमी हैं, मनुष्य हैं संसार में, जिनका स्वभाव ही होता है दुख देने दूसरों को, वो चाहे उनके साथ आप प्रेम से मिलिए चाहे कैसे मिलिए, बस वो डंक मारे, इसको निसर्ग कहते हैं। तो सतान निसर्ग, भक्तों का क्या निसर्ग होता है, साधुओं का स्वभाव क्या होता है, कि अपने घर में आए हुए अतिथि का स्वागत इस तरह करते हैं, नृत्य करते हैं, प्रेम से देखते हैं और सुंदर वचन बोलते हैं। यान ही सता निसर्ग, भगवान कहते हैं यही सज्जन का लक्ष्य। यान शब्द रिजर्वेशन जैसे, बस इतना ही साधु का लक्षण है, प्रेम से बोलना, देखना और आनंद को व्यक्त करना नृत्य आदि द्वारा, गीत द्वारा, नृत्य गीत और प्रेम से निरीक्षण हो रहा है। तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं कि वृंदावन के जो पक्षी हैं यही वैष्णव है। इसका दो भाव, भगवान के लिए नृत्य करना, भगवान के लिए गीत गाना और भगवान को प्रेम से देखना, यही है वैष्णव का लक्ष्य। इस तरह कृष्ण से जीव का संबंध है बढ़े, इसकी चेष्टा करनी चाहिए। वृक्षों की तरह भगवान को अर्पण करना, प्रणाम करना, कोयल की तरह गाना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। मयूर की तरह नाचना और हरिणियों की तरह प्रेम से भगवान को देखना या परस्पर भक्तों को देखना, या निष्ठता निष्ठा। धन्य बनव के साथ, ये वनवासी धन्य, भगवान ऐसा बोल रहे हैं, ये वन में रहने वाले, ये एडुकेटेड नहीं है, ये शिक्षा नहीं मिली है, कोई यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं की, लेकिन इनका जीवन धन्य है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि धन्य नगर कसा है। भगवान के श्रीमुख से वाक निकले हैं, वन में रहने वाले धन्य, वनवासी है, जीव है, कोई शिक्षा नहीं है, कोई भाषा भी नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, लेकिन श्रीकृष्ण का स्वागत करने में अपने पास जो भी गुण है सब लगाते, कुछ बाकी नहीं छोड़े। कोयल के पास भगवान ने गुण दिया, सुंदर स्वर दिया है, तो उसका उपयोग कृष्ण के कीर्तन में कर रहा है। इसी तरह भगवान ने बहुत भक्तों को, बहुत लोगों को सुंदर सुंदर कंठ दिया है, उस कंठ से कृष्ण का भजन गाना चाहिए और नाम कीर्तन करना चाहिए। ये है त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, भगवान के द्वारा दिए हुए सुंदर कंठ का प्रयोग भगवान के कीर्तन में, अन्य के गुणगान में नहीं लगाना चाहिए। आजकल हम देखें भारतवर्ष में जितने भी बड़े बड़े गायक हैं, वो लोग संसार का गीत गाते हैं, भगवान का गीत नहीं गाते। ज्यादातर जो स्त्रियां हैं वो पुरुष का गुण गाती हैं और पुरुष स्त्रियों का गुण गाते हैं, बस ये है। मैं सिनेमा सॉन्ग सारी दुनिया में बस पता नहीं क्यों इतना पड़े हुए हैं वर्णन पर गाते रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने सिखाया हम मानव जाति को कि भगवान का जस गाना चाहिए, और इस समय बड़े बड़े एक्टर लोग, सिनेमा के गायक लोग भगवान का कीर्तन गाने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। इस समय ऐसे चल रहा है इंडिया में, जैसे कुछ कलाकारों का मैं नाम लेता हूं, हेमा मालिनी और क्या क्या, ये लोग अब भगवान के कीर्तन की तरफ झुक गए। तो यह एक संदेह है, एक संदेश है। भगवान कहते हैं कि धन्य अपन और कसर, ये वनवासी जीव धन्य है, मनुष्यों से तुलना करने के तुलना करने पर उनके पास क्या है। देखिए हरिण और मयूर और कोकिल, इनके पास कोई कंप्यूटर नहीं है, फोन नहीं है, कार नहीं है, कोई न्यूज पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान के मुख से इनके लिए निकल रहा है धन्य। धन्य का अर्थ होता है जिसके पास धन हो, सबसे बड़े धनी यही है भगवान का। जिसके पास धन होता है उसको धन्य कहते हैं, फॉर्चुनेट, सौभाग्यशाली, धन्य है ये। मैं इनके घर में आया हूँ, आप इनके घर में आए हैं और हमारा ऐसा स्वागत कर रहे हैं, इनके पास जो कुछ भी है ये सब अर्पित कर चुके हैं धन्य। और इनको दृष्टांत बना करके कह रहे यान ही सताब निसर्ग, यही सज्जनों का स्वभाव होता है, ये इस तरह से प्रेम करते हैं। इस तरह भगवान चलकर वनवासी जीवों का स्वागत कर रहे हैं, उनके स्वागत को स्वीकार कर रहे हैं, और अब नीचे पृथ्वी पर देख करके कह रहे हैं धन्य मध्य धरणी तृण वीर धस्त पाद ध्रुमलता कर जाभिमिष्टा नद्यो द्रय खग मृग सदयावलोक गोप्योतरेण भुजय रपि यस्पृहासी यम धरणी अद्य धन्य। आज यह धरणी धन्य हो गई, ऐसे तो पहले से ही अधन्य है। भगवान के कहने का आशय है कि मैं 12 रूप से इसको अपने दांतों पर लिया, इसको धारण किया हूं, वामन देव के रूप में होकर के इस पर मैं पदन्यास किया, इसको नापा। यह पृथ्वी तो धन्य पहले से ही है, लेकिन आज यह और अधिक धन्य हो गई। कैसे? तब पादस विषम, आपके चरण कमलों के स्पर्श से आज यह परम धन्य हो गई धरती। धन्य है तृण, धन्य है लताएं, और धन्य है वृक्ष और पुष्प। कर्जा विमृष्ट है जो आपकी अंगुलियों का स्पर्श पा रहे हैं, आप अपने नखों से अपनी अंगुलियों से इनके इनके फल फूल को ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए यह ध्रुव लता तृण विरुद्ध ये सब धन्य हो गए। धन्य है यहाँ की नदियां, यमुना मानसी गंगा आदि धन्य है, गिरिराज गोवर्धन आदि पर्वत, खग मृग सब धन्य है, जो आपके स्नेह भरे चितवन से ये पोसे जा रहे हैं, आप जिनको प्रेम से देखते हैं, जिस पक्षी पर, लता पर, वृक्ष पर, पृथ्वी पर, ये सब धन्य हो गए और धन्य हैं वे लताए। नहीं, वो वृक्ष और लताएं कभी कभी भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल का स्पर्श करते हैं। श्री कृष्ण चलते हैं, जगह नहीं रहते हैं, तो लताओं में उनका वक्षस्थल फंस रहा है, छाती से स्पर्श होता है लता से, वृक्ष से, विशेष करके लता से। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव, हे श्री बलराम, देखिए लताओं के भीतर ऐसी स्प्रिया है, ये आपके वक्षस्थल का स्पर्श कर रही है जैसे गोपियां आपके वक्षस्थल का स्पर्श करना चाहती है। पुनः वही अभिनिवेश प्रकट हो रहा है, लताओं को देख करके भगवान को गोपिकाओं का स्मरण हो रहा है। इसको उद्दीपन विभाव कहा गया है भक्ति रसामृत सिंधु में। एक विशेष दृश्य को उदय करके एक विशेष भाव का जब उदय होता है तो उसको उद्दीपन कहते हैं, किसी कारण से उद्दीपित कर रहा है। भगवान वृंदावन में है और उनको स्मरण आ रहा है अपनी प्रिय गोपी जनों का। इसके साथ ही साथ लताओं के सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं, जब स्प्रिया स्त्री जिस वक्षस्थल की, जिस वक्षस्थल का स्पर्श करने के लिए लक्ष्मी को भी स्प्रिया रहती है, स्त्री को भी स्प्रिया रहती है, उस वक्षस्थल का स्पर्श लताए कर रही है, धन्य है लताए। सब जगह धन्य लगाना पड़ेगा, धन्य इयम धरणी, यह भूमि धन्य है, तृण धन्य है, लताएं धन्य है, वृक्ष धन्य है, नदी धन्य है, पर्वत धन्य है, खग मृग धन्य है, कोई आपके चरण स्पर्श से, कोई आपके हस्त स्पर्श से, कोई आपके सुंदर स्नेह भरी दृष्टि से, और कोई कोई आपके भुजाओं के स्पर्श से, कोई कोई वक्षस्थल के स्पर्श से, सब धन्य हो रहे हैं। इस तरह भगवान अपना स्नेह प्रकट कर रहे हैं श्री बलराम जी के बहाने, ये धन्य आपके हाथों का स्पर्श पाकर धन्य है, मतलब मेरे हाथों का, इस तरह से कह रहे हैं धन्य हो गए। कैसे भगवान ने कहें कि हमारे चरण से धन्य हो गए पृथ्वी, हमारे हाथ स्पर्श से धन्य हो गए वृक्ष, ये सब तो उस तरह से इनडायरेक्ट में बोल रहे हैं। धन्य है मध्य धारणी तरण देवधस्तक, धन्य है वह भूमि जहाँ भगवान डायरेक्ट अपना चरण विन्यास कर रहे हैं, जहाँ वह भूमि अनेक प्रकार के सज्जाओं से युक्त है, जहाँ श्री कृष्ण बैठते हैं, पत्थर पर बैठते हैं, सज्जाओं पर बैठते हैं, धन्य है वे वृक्ष जिनके पत्ते को वो तोड़ करके आसन बनाते हैं, जिनके पुष्प को लेकर वनमाला गुंजते हैं, पहनते हैं या दूसरे लोग पहनाते हैं, और वे वृक्ष धन्य है जिनका फल खाते हैं, वो नदी धन्य है जिसमें श्री कृष्ण स्नान करते हैं, पानी पीते हैं। अपने साथ भगवान थर्मस लेकर नहीं जाते थे, कोई लोटा गिलास कुछ नहीं, ऐसे जाते थे वन में फल फूल खाते थे और जमुना जी का ऐसे पानी पीते थे, ये मानसी गंगा नदी पर जल पीते स्नान करते थे। क्यों नहीं धन्य होंगे, भगवान उनकी धन्यता का निरूपण स्वयं कर रहे हैं। धन्यो अत्रय खग मृगा सदैव लोके, सदैव लोके, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि ये आपके स्नेह भरी दृष्टि को पा करके धन्य हो गए, मतलब मैं स्नेह से देख रहा हूं, सभी हमारे अपने हैं। कृष्ण के कहने का यही आशय है कि हे धरणी, हे वृक्षों, हे लताओं, हे नदियों, हे पर्वतों, हे खग मृगों, मैं परम स्नेह से तुम्हारे प्रति देख रहा हूं, तुम सब लोग मेरे लीला के सहायक हो, मेरे परिकर हो, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, तुम धन्य हो। इस तरह हृदय में तो भाव है ही, हृदय के भावों को भगवान वाणी से व्यक्त कर रहे हैं। तो जहां जाते थे वहां इस तरह वृंदावन के वृक्ष, लता, पशु पक्षी के सौभाग्य का वर्णन करते हुए कभी बांसुरी बजाते थे, कभी नृत्य करने लगते थे, कभी गान करते थे, कभी क्रीड़ा करते थे, इस तरह प्रवेश कर रहे हैं। वृंदावन में प्रवेश करके लीला क्या क्या कर रहे हैं तो आगे इसका वर्णन है। तो 9:35 में इंडिया के घड़ी को कितना समय हो रहा है। वृंदावन में प्रवेश करके श्री कृष्ण क्या लीला करते हैं इसको बाद में कहेंगे, और फिर धनुकासुर का बात करेंगे।
अभी वृंदावन प्रवेश की लीला हुई उनकी, प्रवेश करके क्या क्या लीला करेंगे वर्णन बाकी है। हरे कृष्ण।